तो छठे स्कंद के अंत में इंद्र किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का समर्थन पाए उसको सुनकर परीक्षित महाराज के मन में यह संशय उत्पन्न होता है, और सप्तम स्कंद जिसका विषय है ऊती, 10 मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में बताए भागवतम के, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय। तो ये 10 टॉपिक्स में 7वां स्कंद का टॉपिक है ऊती। छठा स्कंद जो हमने अभी देखा उसका टॉपिक क्या था? पोषणम। पोषणम शब्द का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार पालन पोषण करते हैं जैसे कोई पिता अपने शिशु का, क्योंकि चाहे बच्चा कितना भी गलती क्यों न करे, माता पिता कभी उसको तिरस्कृत नहीं करेंगे। तो हर प्रकार के कष्ट और दुख भक्त अगर भगवान को दें, फिर भी भगवान निरंतर उनको संरक्षण करेंगे, इसका अर्थ है पोषणम। तो चाहे व्यक्ति कितना भी पापाचार क्यों न करे, अगर उसका कृष्ण कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व के साथ श्लेष संबंध हो गया तो भगवान का संरक्षण गारंटीड है। तो इसलिए अजामिल हर प्रकार के पाप कार्य किए लेकिन केवल नारायण के नाम से वो जुड़ गए, बच गए। उसके पश्चात इंद्र, इंद्र ने इतने लोगों की हत्या की, विश्वरूप की हत्या की, इंद्रदेव ने अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध किया, ये सब अक्षम्य अपराध है एक दृष्टि से, लेकिन क्योंकि वो कि भगवान श्री कृष्ण की ओर से संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रशासन देख रहे हैं, इसलिए भगवान ने कहा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कृष्ण सेवा। अगर कोई इस तत्व को पकड़ ले, कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा, तो कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा के तत्व को कोई पकड़ ले तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति चाहे कितनी भी गलती क्यों न करे, मैं उसको संरक्षण दूंगा। अर्थात कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति कभी निष्कासित नहीं किया जाता, कभी रिजेक्ट नहीं किया जाता, कृष्ण हमेशा उसे स्वीकार करेंगे और उनको संरक्षण देंगे। तो तत्पश्चात फिर चित्रकेतु महाराज की कथा, वृत्रासुर की कथा, और फिर आते हैं हम अंत में किस प्रकार दिति के साथ आदान प्रदान हुआ। तो इन सभी कथाओं में एक कॉमन थीम क्या है? पोषणम। अर्थात कृष्ण अपने भक्तों को कभी तिरस्कृत नहीं करेंगे, कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। वैसे ही हम लोगों को चाहिए कि जब हम भक्तों के संग में सेवा करें, वैष्णवों को हम सेवा में नियोजित करें, तो इसलिए हमेशा देखा गया है कि वैष्णव समाज में प्रशासन करना पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक प्रस्ताव है, क्योंकि वैष्णव भगवान के हृदय को बहुत प्रिय हैं, और वैष्णवों के हृदय को चोट पहुंचे तो भगवान को बहुत चोट पहुंचती है। और प्रशासन का अर्थ ही होता है नियंत्रण, अनुशासन, नियम, पुरस्कार, दंड इत्यादि। तो अगर वैष्णवों की जब संस्था चलती है और उसमें प्रशासन निर्धारित करना हो, तो यदा कदाचित इच्छा न करते हुए भी हमारे बातों से, व्यवहार से, निर्णयों से कोई न कोई वैष्णव का हृदय विदीर्ण होता है, उसको चोट लगती है, तो उसका घातक परिणाम प्रशासक को अवश्य प्राप्त होगा। चाहे वो 100% कार्य कृष्ण के लिए क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन अग्नि में हाथ डालो तो जलेगा हाथ। तो इसलिए वैष्णव समाज में प्रशासन करने वालों का मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वैष्णव समाज में जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वो अवश्य मरेंगे। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव भक्तों को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आसान कार्य नहीं। तो इसलिए बहुत विचार करके सावधानी के साथ करना चाहिए, और इस बात को जान के कि जैसे फायर ब्रिगेड में कोई आदमी उतरा है तो समझता है कि आग के साथ खेल रहा है, उस जानकारी के साथ करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर यह वर्णन आया है, पोषणम शब्द का अर्थ ही है कि भगवान अपने वैष्णव भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं और उनको हर प्रकार से संरक्षण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और छठे स्कंद में ये संपूर्ण श्रृंखला हमने देखा कैसे वैष्णव भक्तों को भगवान संरक्षण देते हैं अपने ही शिशु की भांति। हाँ, सरकार नागरिकों की सेवा करती है, लेकिन नागरिकों की सेवा करते समय एक निर्विशेष भाव होता है। कोई व्यक्तिगत रूप से सरकार का हृदय कोई नागरिक नहीं जीतता, वो नियम के अनुसार हाँ ये हमको करना है वो करना है दायित्व निभाना है, लेकिन भावना विहीन प्रशासन होता है सरकार का। लेकिन माता पिता का शिशु के साथ आदान प्रदान संपूर्ण अनुराग भावना युक्त होता है, और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का सामान्य जीवों के साथ निर्विशेष रूप से, लेकिन वैष्णव भक्तों को वो अपने हृदय का कलेजे का टुकड़ा मानकर चलते हैं। तो इसलिए हार्वर्ड MBA करके कोई इस्कॉन को मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर पुरस्कार और दंड के आधार पर ही सब नियम बताए जाते हैं। तो इसलिए वैष्णव संघ में आकर अगर कोई गलती करे भी तो कभी कभी इस्कॉन में बहुत कठोर दंड दिया जाता है और उसको वैष्णव समाज से कई बार निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये सब करने से पूर्व शास्त्र को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और आचार्यों ने किस प्रकार ऐसी परिस्थिति में कार्य किया उसको समझने के बाद ही वास्तव में कार्य करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, इफ वन परफॉर्म्स गुड साधना एंड स्टडीज माय बुक केयरफुली मैनेजमेंट विल बी एट फिंगर टिप्स। तो इस्कॉन को संभालना हो तो सबसे पहले साधना श्रेष्ठ होनी चाहिए और प्रभुपाद के ग्रंथों का गहन ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा हम लोग बाहर के दुनिया के नियमों को वैष्णव समाज के परिवेश में लागू करने का प्रयास करेंगे और अपना ही गड्ढा कब्र खोदेंगे। तो इसलिए पोषणम ध्यान से देखिए कैसे भगवान किस बात को महत्व देते हैं और किस बात को नेग्लेक्ट करते हैं, किस बात को महत्व देते हैं कि ये भक्त मेरी सेवा करने के लिए प्रयास आरंभ किया कि नहीं, ये महत्व का मुद्दा है। एक बार भक्त ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा आरंभ कर दी उस बात को भगवान अत्यधिक महत्व देते हैं, और उसके पश्चात सेवा करते करते अगर उससे कुछ गलती हुई तो भगवान एक स्नेहिल पिता की भांति वात्सल्य भाव से युक्त उस भक्त को सुधार करने के कई कई मार्ग बताते हैं और अवसर देते हैं। लेकिन इस्कॉन में कई बार प्रशासक ऐसा नहीं करते, न सुधरने का अवसर देते हैं, न उस व्यक्ति को उसके गलती को समझने का अवसर देते हैं, न उसको कुछ बोलने देते हैं, सीधा गाली और गोली चला देते हैं। तो इसलिए यहां पर ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है समझना कि सुग्रीव बहुत समय तक रामचंद्र जी की सेवा उपेक्षा करके केवल अपने पत्नी और परिवार के साथ लीला रमण कर रहे थे, इंद्र तृप्ति में चूर थे। रामचंद्र को बहुत क्रोध आ रहा था और क्रोधावेश में आकर लक्ष्मण को कह रहे थे, लक्ष्मण अगर सुग्रीव ने मुझे ये पहले से ही आश्वासन दिलाया है कि वो मेरे साथी बनेंगे, संगी बनेंगे और रावण के साथ चढ़ाई में वो संपूर्ण समर्थन करेंगे, लेकिन माल्यवंत पर्वत में बैठकर वर्षा ऋतु के 4 महीने लगभग पूर्ण होने को आए, वर्षा ऋतु में वर्षा होते हुए एक एक बूंद को देखकर मुझे केवल सीता देवी की अविरल छलकती हुई अश्रुधारा स्मरण हो रही है, तो मेरे मन में यह प्रश्न है कि क्या सुग्रीव अपने दिए गए वचन और अपने दिए गए सेवा को याद किए हैं कि नहीं। अरे हमारे सामने सुग्रीव ने दीक्षा ली और दीक्षा के समय सुग्रीव ने यह व्रत लिया, मैं ये फलाना फलाना नियम पालन करूंगा, राम की सेवा में लगूंगा, बड़ी बड़ी बातें तो करके गए, लेकिन कहां है वो, अपने वाणी के अनुसार कार्य करते हुए तो नहीं दिख रहे। तो लक्ष्मण मैं कहता हूं कि तुम तुरंत जाओ किष्किंधा में, उसके राज अग्निगर में जाकर, उसके राजमहल प्रासाद में जाकर संदेश दे दो, ये न संकुचिता पंथा ये न वाली हतोगत समये तिष्ठ सुग्रीव मां वाली हतमन्वगाह, ये जाकर समाचार दे दो, हे सुग्रीव तुमको इस बात का स्मरण रहे कि जिस मार्ग के माध्यम से हमने वाली को मृत्यु के द्वार भेजा था वो द्वार अभी भी खुला है, वो मार्ग अभी भी खुला है, जाके उसको संदेश दे दो। लक्ष्मण कहते संदेश क्यों, मार ही डालता हूं। तो भगवान कहते नहीं नहीं मारो मत, केवल संदेश दे के आओ। तब जाते हैं लक्ष्मण जी संदेश देकर, फिर सुग्रीव पश्चाताप करते भगवान के पास आते हैं, तो भगवान की प्रतिक्रिया गौर करने योग्य है कि प्रभु रामचंद्र जी ने अपने सेवक के द्वारा की गई गलती को क्षण भर में क्षमा कर दिया, उनको स्वीकार किया, आलिंगन किया और उन्हें स्वीकार करके क्षमा करके उनको फिर सेवा में लगा दिया और फिर उनको वानरों का राजा के रूप में नियुक्त किया। अब प्रश्न उठता है, जिस व्यक्ति ने 4 महीने तक प्रभु रामचंद्र जी की सेवा को पूरी तरह भूल गए उसको क्यों नियुक्त किया गया? तो इसलिए यहां पर इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए क्योंकि रामचंद्र जी अपने सेवक के सेवा भाव को देखते हैं और सेवक के द्वारा कही गई गलतियों को असीमित मात्रा में क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए ये वैष्णव संघ कॉरपोरेट नहीं है और इसलिए दोनों में नियम बिल्कुल भिन्न भिन्न चलते हैं। जो कुछ भी संस्था को चलाने के लिए संरक्षण की आवश्यकता है वो करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर वैष्णव कभी गलती करे तो उसके साथ व्यक्तिगत रूप से किस तरह सुधार का अवसर दिया जाए, ये कुछ लोगों को उनके साथ ऐसा आदान प्रदान करना आवश्यक है। तो इसलिए ये 6ठे स्कंद से हम पोषणम जो विषय है, इस पोषणम विषय को लेकर हम समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि वैष्णवों ने कुछ गलती की और प्रश्न उठा कि इनको क्षमा करें या दंड करें, क्या करना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में 6ठा स्कंद एक बार पढ़ लिया जाए और तब भगवान की प्रेरणा से, भगवान जैसे गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तो इसलिए कई बार निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता, बहुत विवेक शक्ति और वो विवेक शक्ति बहुत अधिक प्रार्थना और आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अगर किसी को प्रशासन करना हो तो वो शास्त्र के आधार पर, साधना के आधार पर, सेवा के आधार पर वैष्णवों को संतुष्ट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके प्रार्थना से युक्त हृदय से जब हम निर्णय लेने का प्रयास करेंगे तब भगवान उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है अंदर से प्रेरणा देंगे। तो बिना सेवा के, आशीर्वाद के, प्रार्थना के उचित विवेक शक्ति संभव नहीं, और बिना विवेक शक्ति के केवल किताबी ज्ञान या बाहर के दुनिया के न्याय का ज्ञान आपको बहुत दूर तक नहीं लेके जाएगा, आप कुछ ही समय में माया के जंजाल में फंसकर हरे कृष्ण आंदोलन के ही अपराधी बन जाएंगे। तो यहां पर छठे स्कंद में यह वर्णन आया है पोषणम का। आगे अब प्रश्न उठता है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन कनेक्टेड टू भगवान भक्तियन भक्त। साधु पृष्ठम महाराज, साधु पृष्ठम महाराज, हरेश्चरितमद्भुतम् यत् भागवत माहात्म्यम् भगवत भक्तिवर्धनम्। तो यहां पर महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर कहते हैं, हे परीक्षित, साधु पृष्ठम, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न आपने पूछा है। हरेश्चरितम अद्भुतम, हरि का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। यत भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम, इस प्रकार के प्रश्नों से भगवान, भागवत, भक्ति, इन तीनों के श्रद्धा बढ़ती है। सा श्रद्धा धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसाम हरेर पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुखाप्ययम आशु धत्ते। भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने के परिणाम स्वरूप हृदय के भीतर हमारे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति का भाव बढ़ता चला जाएगा। विरक्ति मन्यत्र करोति पुंस, और इस भौतिक जगत के, भौतिक विषय वस्तुओं के प्रति आकस्मिक अनासक्ति जागृत होगी। हरेर पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुखाप्यम, और जो इस भौतिक जगत के महान दुख के विशाल सागर में हम निमग्न हैं, उससे शने शने हम उठने लगेंगे। इसलिए इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है, भव सागर। सागर से तुलना की गई है, क्यों? क्योंकि सागर का जल क्या होता है, नमकीन। तो हम लोग वाटर के कॉन्फ्रेंस में कई बार जाते हैं गोवर्धन इको विलेज को रिप्रेजेंट करके, तो उसमें एक प्रेजेंटेशन में मैं बता रहा था कि आप में से अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि पूरे पृथ्वी पर कितना परसेंटेज खारा पानी है और कितना परसेंटेज मीठा पानी है। तो पूरे विश्व में 97.5% पानी सॉल्टी है, ओशन वाटर, और केवल 2.5% वाटर मीठा है। तो इसलिए इससे एक उपमा हम ले सकते हैं कि जीवन में भी हम लोगों का सुख दुख का परसेंटेज कई बार कलयुग में ऐसा ही होता है। और ये 2.5% जो स्वीट वाटर है, उसको अगर लिया जाए तो उसका 99.7% ग्लेशियर में है और जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर में है। समझ रहे हैं? तो इसलिए आपके पास बचता है 0.3%, जो आप जितना नदी और तालाब और सरोवर वगैरह देख रहे हो, दैट इज 0.3% ऑफ दिस 2.5%। तो इसलिए अगली बार जब फ्रेश पानी कहीं से दिखे थोड़ा सलाम कर देना, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते कि कितना रेयर कमोडिटी है, क्योंकि जहां भी देखते हैं अपने को पानी इजीली मिल जाता है। तो इसलिए बहुत दुर्लभ है, और वैसे ही भौतिक जगत में संतोष, सुख, ये भी उतना ही परसेंटेज में मिलता है। तो यहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार हम भगवान भागवत भक्ति को समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं और महाराज परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, ऐसा ही प्रश्न कि भगवान क्या भक्त और सुर देवताओं के साथ पक्षपात करते हैं अथवा नहीं, ऐसा प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल के वध के पश्चात नारद मुनि के समक्ष रखा। आप लोग जानते ही हैं शिशुपाल जी भगवान के रिलेटिव थे, कजिन थे, और बचपन से उनको आदत थी, कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक द्वेष था। जैसे हम लोग करते हैं साधना भक्ति, साधना भक्ति अर्थात कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं, तो जबरदस्ती कर करके धीरे धीरे हम लोग उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आते हैं रागानुग भक्ति, राग अर्थात स्पॉन्टेनियस, तो वैसे ही शिशुपाल आते थे रागानुग असुर, मतलब कृष्ण के प्रति एक स्पॉन्टेनियस द्वेष था, ऑटोमेटिक, पूरा स्पंज भरा हुआ था, थोड़ा दबाओ तो पूरा निकलेगा बाहर। तो ये थे शिशुपाल जी। अब उनको भगवान ने ही प्रेमवश कह दिया था कि कोई बात नहीं, 100 गाली तक माफ, 100 गाली देंगे क्षमा करेंगे, लेकिन उसके बाद एक और गाली दें तो मैं समाप्त कर दूंगा। तो शिशुपाल जी जब भी गाली देते थे हिसाब बराबर रखते थे कितनी गाली हुई, क्योंकि जान प्यारी थी, तो बराबर 100 के पहले वो बंद हो जाते थे, नियंत्रित कर लेते थे। लेकिन जब राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने प्रस्ताव दिया कि अग्र पूजा कृष्ण की होगी, अब उनके हृदय में जो द्वेष की भावना थी वो एक वेगवती सरिता किस प्रकार डैम को फोड़ के निकलती है, वैसे उनके आत्मसंयम और नियंत्रण को तोड़कर विस्फोट करके बाहर निकली। और उस दिन जो उत्साह के साथ उन्होंने गाली देना आरंभ किया, आवेश में आ गए और भूल गए गिनती रखना, नहीं तो उनका नॉर्मल गाली देने का प्रोसीजर बहुत ऑर्गेनाइज था, बराबर 90-91 में स्टॉप हो जाते थे और उकसाओ फिर भी बोलते थे नहीं नहीं बस हो गया आज का कोटा पूरा। उस दिन सीमा पार क्रोध आ गया और वो भूल गए और फिर ऐसे बरसे कि 100 गालियों के ऊपर जब हो गया तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लिए और सुदर्शन चक्र को लेके उठा के उनका गला काट डाले। और जैसे ही उनका गला कट गया उनको तुरंत मुक्ति प्राप्त हो गई और सभी लोगों ने अपने नेत्रों के समक्ष देखा कैसे शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार योजना बनाई कि उनका सुदर्शन चक्र इतने फुर्ती से चला कि एक बूंद रक्त भी नीचे स्पर्श नहीं किया और उस यज्ञ के मंडप को प्रदूषित नहीं किया। अब देखिए युधिष्ठिर महाराज अपना राजसूय यज्ञ करवा रहे हैं और राजसूय यज्ञ का अंतिम परिणाम होगा कि युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती सम्राट बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। अगर कोई सत्ताखोर हो तो निरंतर कल्पना करता रहेगा कब वो क्षण आए जब मैं चक्रवर्ती सम्राट के रूप में नियुक्त हो जाऊं और जब विश्व के सारे सम्राट आ आकर अपने मुकुट मेरे सामने चरणों में समर्पित करें। व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के वशीभूत निरंतर अपने मन के भीतर ऐसे ही स्वप्न देखता रहेगा, क्योंकि मन के वेग को नियंत्रित करना कृत्रिम रूप से संभव नहीं। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज के मन का एक परिचय इन प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है कि युधिष्ठिर महाराज का हृदय कितना निर्मल और पारदर्शी था, कि कुछ ही क्षणों में जब यज्ञ संपन्न होगा उनको सम्राट घोषित किया जाएगा। राजसूय यज्ञ का जो अंतिम निर्णय यही है और वो करना चाह रहे थे भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कराने कि कृष्ण के भक्त लोग कृष्ण का आशीर्वाद पाकर कृष्ण के ही सहयोग से किस प्रकार साम्राज्य संभालेंगे, उनके दृष्टिकोण से केवल वो कृष्ण के लिए ही सेवा कर रहे थे। लेकिन यहां पर जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन अस्त्र से शिशुपाल का गला काट दिया तो युधिष्ठिर महाराज का ध्यान सीधा कृष्ण की लीला में प्रविष्ट हो गया और वो भूल गए कि यहां पर राजसूय यज्ञ चल रहा है जिसका परिणाम होगा कि मैं सम्राट बनूंगा, वो सब भूल गए। क्योंकि अगर युधिष्ठिर ऐसे राजा होते जो अपने सम्राट पद की प्रतीक्षा में रहते तो तुरंत ये मैटर होने के बाद कहते चलो चलो आगे बढ़ो, राजसूय यज्ञ को शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करते हैं। वैसे ही बीच में कुछ रुकावट आ गई शिशुपाल ने और बाद में शिशुपाल के वध ने बहुत रुकावट कर दी, टाइम जा रहा है, चलो शीघ्र अतिशीघ्र इसको संपन्न करते हैं, नहीं तो और कोई संकट आ जाए और कोई बाधा आ जाए। और जब मन में इस प्रकार की चिंता होती है वो चिंता वाणी के रूप में व्यक्त होती है। कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक्टिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा गया जैसे डॉक्टर लोग एक्सरे मशीन लगाकर देखते हैं हड्डी कहां टूटी है, देखते हैं कि अंदर ट्यूमर कहां है, कैंसर कहां है, अंदर कहां पर रक्त में गंदगी है, वो एक्सरे के माध्यम से प्राप्त होता है, ब्लड रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त होता है। वैसे वैष्णव समुदाय में अगर किसी के हृदय में क्या चल रहा है समझना हो तो उसके वाणी को गौर से देखें, किसी के वाणी को देखकर परख के उसका मूल्यांकन एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि इनके हृदय के अंतःकरण में क्या विचार घूम रहे हैं। वही विचार ऊपर कंठ में आकर जीवा के अग्रभाग से हम तक पहुंचेगा। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज के हृदय में अगर महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती तो उनके वाणी में वही आता। लेकिन दूर दूर तक युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन के विषय में अनुसंधान नहीं था। कृष्ण सामने दर्शन दे रहे थे, कृष्ण ने लीला की, कृष्ण के लीला रूप गुण इत्यादि में वो इतना समाविष्ट हो गए, आविष्ट हो गए। और नारद मुनि को पूछने लगे, अरे बताइए भैया ये कृष्ण क्या है, क्या असुरों के प्रति द्वेष करते हैं, देवताओं के प्रति प्रेम करते हैं? मुझे तो लगा कि गीता में कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन अगर समोहम है कि नहीं है। तो इस प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि ये कथा सुनाना आरंभ करते हैं, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु वाला। तो इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि इस्कॉन में इस लेवल का कॉन्शियसनेस बढ़ाने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी ने 70 साल की आयु में इतनी कसरत की केवल एक दृष्टिकोण से, जिससे लोगों के मन के चिंतन का विषय बदले। जब चिंतन का विषय बदलेगा तब चर्चा का विषय बदलेगा, जब चर्चा और चिंतन का विषय बदलेगा तब जाकर वास्तविक कार्य भी बदलेंगे। तो इसलिए यहां पर युधिष्ठिर महाराज के इस बात को सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि आरंभ के समय जो जय और विजय दोनों भाईगण थे और उन लोगों को अभिश्राप प्राप्त हुआ और उस श्राप के परिणाम स्वरूप वो पृथ्वी में आ गए और उन लोगों ने ऐसी लीला की, तो सबसे पहले उनको जन्म मिला हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोग इस्कॉन से जुड़े इन सभी तत्वों को समझने के लिए, इसलिए कलकत्ता में बंबई में प्रभुपाद ने आरंभ के दिनों में लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम आरंभ किया। वो लाइफ मेंबरशिप के पीछे कारण क्या था? प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोग इस्कॉन के भक्तों के साथ जुड़े और जुड़ने के बाद उनके चिंतन का विषय इनके हृदय में प्रविष्ट हो जाए। तो कुछ भक्त लोग कलकत्ता में थे प्रभुपाद जी के साथ, किसी के घर पर वो निमंत्रण पाके गए थे, भोजन कर रहे थे, वो भक्त तो उनको प्रसाद खिला रहा था और प्रसाद खिलाते खिलाते बोल रहा था और खाइए और खाइए और खाइए, और वो भक्त खाते जा रहे थे खाते जा रहे थे। उसने कहा बस बस बस, लेकिन नहीं आई और खाइए और खाइए। अब अमेरिकी भक्तों को इंडियन स्टाइल मालूम नहीं था कि भाई यहां पर तो बोलते रहेंगे और खाइए और खाइए, तो उनको लगा अरे मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं फिर भी वो कर रहे हैं, मतलब क्या करें। तो वो बेचारे खाते चले गए, खाने के बाद मंदिर में जब 3C अल्बर्ट रोड में गए, पेट पकड़ के चिल्लाने लगे, बोले प्रभुपाद मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा होगा ही, तूने 25 पूरी खाया। तो वो घबरा गया, यार प्रभुपाद को देख के बोला आपको कैसे पता। प्रभुपाद ने कहा मैं गिन रहा था। दूसरा भक्त हंसने लगा, प्रभुपाद ने कहा तुम मत हंसो तुम 15 खाए। फिर प्रभुपाद ने कहा देखो भारत में हम लोग जा रहे हैं लोगों के घरों में, उनके साथ संबंध स्थापित करने, और ये संबंध स्थापित हम क्यों कर रहे हैं, उनके चिंतन के विषय को अपनाने नहीं, अपने चिंतन का विषय उनको समर्पित करने। और सबसे बड़ी चुनौती अब इस्कॉन के बढ़ते हुए संस्था में यह है कि इतने विविध प्रकार के शक्तिशाली लोग इस भक्त समूह से जुड़ रहे हैं, जो कि भौतिक रूप से अपने अपने कार्यकलापों में बड़े सफल रहे, समृद्ध रहे, श्रेष्ठ रहे। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि क्योंकि वो लोग भौतिक रूप से सुसंपन्न हैं और शक्तिशाली हैं और सफल हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनके विचारों को अपनाकर अपने चिंतन के विषय को भूल जाएं। तो इसलिए प्रभुपाद NOI में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, नॉट एवरीवन कैन यूज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। अर्थात हर व्यक्ति की औकात नहीं कि वो हर वर्ग के सामाजिक वर्ग के व्यक्ति के साथ संग कर सके और फिर अपने चिंतन के विषय को बनाए रख सके। इसलिए महाप्रभु ने पंचतत्व को भेजा बंगाल में, बोला सामान्य जन सामान्य में कथा कीर्तन करो, हरिनाम में सबको डुबो, लेकिन राजनीति वालों के साथ आदान प्रदान करने के लिए रूप और सनातन को भेजा। बोले पॉलिटिशियन के साथ सब लोग उठ बैठ नहीं सकते, ये लोग खुद पॉलिटिशियन रहे, राज प्रधानमंत्री वित्त मंत्री रह चुके हैं, ये लोग ये सब गेम खेल चुके हैं, इसलिए आप लोग जाइए और आप लोग वृंदावन जाइए, क्योंकि वहां पर मुगल लोगों का सपोर्ट लगेगा, ये सबकी बस की बात नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसे महाप्रभु ने अपने मिशन को लीड किया, अलग अलग लोगों को इस प्रकार सेवाएं दी जिससे न केवल वो कार्य कर सके, लेकिन कार्य के साथ साथ जब चेतना को बनाए रखें उसको तब सेवा कहते हैं। केवल कार्य चलते रहें और अपनी चेतना भंग हो जाए, चिंतन का विषय ध्वस्त हो जाए, तो फिर वो केवल कार्य कार्य रह जाता है, सेवा नहीं बचती। तो इसलिए फिर कई फिर अच्छे अच्छे भक्त लोग शहीद हो जाते हैं सेवा के जंग में। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज के चिंतन का विषय है, ऐसे चिंतन का विषय हमें भी अपने चाहिए जीवन में उतारना है। इतना ऐश्वर्य, इतना साम्राज्य, इतनी सत्ता रखते हुए युधिष्ठिर महाराज हर क्षण यही सोच रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, वो कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। तो आगे वर्णन आता है कि why there was enmity between Hiranyakashipu and Prahlad, ये प्रश्न पूछा गया, क्योंकि वर्णन आता है कि नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि हिरण्यकश्यपु का अपने पुत्र प्रहलाद के साथ बड़ा वैर हो गया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अरे पिता का पुत्र के साथ इतना वैर, हाँ छोटी मोटी खिटपिट तो होती रहती हर परिवार में, लेकिन इतना वैर कि उनके ऊपर आक्रमण और उसके बाद विध्वंस, ये क्या हुआ। आगे तो कहते हैं हिरण्यकश्यपु तपस्या करने लगे और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ही दृष्टिकोण से तपस्या की, जिससे कि मैं इतनी शक्ति प्राप्त करूं और भगवान श्री विष्णु को समाप्त कर सकूं। तपस्या तो उन्होंने की, लेकिन किस दृष्टिकोण से? विष्णु भगवान को पराजित करने के दृष्टिकोण से। तो इसलिए जब हम तपस्या करते हैं, वो तपस्या तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में और शुद्ध सत्व चारों स्तर पर हो सकती है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं, ब्रह्मा जी को देखकर जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, यदि दास्यसि अभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद् विसृष्टेभ्यो मृत्युर्माभू परप्रभो। वो कहते हैं कि देखिए, वैसे तो आप मेरे सामने प्रकट हुए, मैं तो आपकी अहेतु की सेवा में लगा था, लेकिन ब्रह्मा जी अगर आप आ ही गए हो और आप इतने महान हो, इतने सर्वशक्तिशाली हो और कुछ देना चाहते हो, तो छोटी मुंह बड़ी बात। यदि दास्यसी अभिमतान वरान में वरदोत्तम, मैं केवल छोटा सा एक वरदान मांगता हूं, बहुत बड़ा नहीं। भूतेभ्य त्वत विसृष्टेभ्यो, आपने जितने जीवों को निर्माण किया है 84 लाख योनियों में, मृत्युर माभू वर, मेरी बस उनके द्वारा मृत्यु न हो। हाँ, नांतर बहिर दिवा नक्तम अन्यस्मात पिचायुधे न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरेर न मृगैरपि, न धरती में मेरी मृत्यु हो, न आसमान में हो, न घर के बाहर, न अंदर, न अस्त्र न शस्त्र, न जीवित न मृत, किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु न हो, बस ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। तो बड़े प्रेम से उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत कर दिया। तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, ओरे मूढ़ लोकुष्णो चैतन्य मंगल चैतन्य महिमा याते जानिबे शकल, कि केवल महाप्रभु के लीलाओं को पढ़कर हम उनकी महिमा को समझ सकते हैं। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, वृंदावन दास कोयला चैतन्य मंगल याहार श्रवण नाशे सर्व अमंगल। तो जो हमारे हृदय में अमंगलकारी अहंकार युक्त भावनाएं हैं, उनसे मुक्त होने के लिए तीव्रता के साथ विनम्रता पूर्वक वैष्णव सत्संग में हरि कथा का श्रवण करना एक अनिवार्य नियम है। और इसलिए हम क्यों भागवत सुन रहे हैं, क्यों चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, जिससे कि ये सारे अनर्थ नष्ट हो जाएं। भागवते यत भक्ति सिद्धांत रसार लिखी आचेन इहा जानी कोरिया उद्धार। भागवत में जितना सिद्धांत वर्णन है, वो सब महाप्रभु की लीलाओं में भी, उन सभी सिद्धांतों का मूल तत्व निष्कर्ष निचोड़ पन्ने पन्ने पर श्लोक श्लोक में अंकित है, हमारे सामने प्रस्तुत है। तो इसलिए कई बार हम वैष्णव सत्संग के शक्ति को समझ नहीं पाते। ये एकमात्र ऐसा संघ है जहां हमारे हृदय के अंदर का अहंकार नष्ट हो सकता है। पूरे ब्रह्मांड की सबसे कठोर वस्तु क्या है? डायमंड नहीं, स्टील नहीं, आयरन नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे कठोर वस्तु है अहंकार। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार सबसे सूक्ष्म है, लेकिन कोई बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसको विस्फोटित नहीं कर सकता, उसको आंच नहीं लगा सकता। न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़िए, भगवान की काल शक्ति उसको स्पर्श नहीं कर सकती। तो इसलिए वैष्णव समाज में चाहे कितनी भी कमियां क्यों न हो, प्रशासन में या किसी प्रकार के नियम पालन में चाहे कितनी भी कमियां क्यों न हो, लेकिन वैष्णव समूह की ताकत को हमें समझना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग किन के बीच हैं। भक्त लोग विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं ये कोई सामान्य लोग हैं, ये अगर प्रसन्न हो तो इनके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप हृदय के भीतर स्थित सबसे कठोर वस्तु जिसे ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आंच भी नहीं लगा सकती, ये केवल वैष्णवों के संतोष और आशीर्वाद से टूट फूट कर नष्ट होकर चकनाचूर हो सकता है, अहंकार। तो इसलिए इस तत्व को समझना बहुत आवश्यक है, और इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरो ए दासे त्रिनपेख अति हीना। तो ये हम लोग भजन गाएंगे कुछ समय के बाद, कि जब हम वास्तव में भगवान और वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हैं तो ये शनै शनै हमारे हृदय के अंदर का अहंकार नष्ट होता है। ये वैष्णव समाज की शक्ति है। तो इसलिए कभी भी वैष्णव को देखो तो केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हम आते हैं भगवान के सामने भगवान को देखने नहीं, भगवान के द्वारा देखे जाने के लिए। चंद्रिका विशदा स्मेरे स अरुण अपांग वीक्षित स्वकार्थानाम इवरज सत्वाभ्याम सृष्टि पालक। हम लोग जब भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान जब हम पर दृष्टिपात करते हैं तो भगवान के दृष्टि से हमारे हृदय के अंदर सेवा की इच्छाएं जागृत होती हैं। सेवा जब करने लगते हैं तो फिर कष्ट होता है, परेशानी होती है, तो हम लोग सोचते हैं सेवा करें कि नहीं करें, तब भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। भगवान के मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान का दर्शन करके हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। दैट इज वेरी एनकरेजिंग फॉर द डिवोटी। द लॉर्ड्स ग्लैंस क्रिएट्स डिजायर एंड द लॉर्ड्स स्माइल एनकरेजेस द डिवोटी। तो इसलिए हम लोग दर्शन जब करने जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को देखने के लिए नहीं जाते। डॉक्टर के पास जाके हम ये नहीं कहते डॉक्टर कैसे हैं आप, ठीक है? अरे वो तो ठीक ही है, हमारा गड़बड़ है इसलिए जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के सामने और वैष्णवों के सामने भी इसी भाव के साथ प्रस्तुत होना चाहिए कि मैं आपके सामने उपस्थित हूं आपके द्वारा सेवा में नियोजित होने और शुद्ध होने। तो इसलिए एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था मुंबई से लंदन, और मेरे पीछे एक वयोवृद्ध महिला बैठी थी। मैं जप कर रहा था तो उसको शायद डिस्टर्ब हो रहा था। वो मेरे पास आके बोलती है, इतना जोर जोर से जप मत कीजिए स्वामी जी, बंद कीजिए इसको, ये मंत्र बोलना बंद कीजिए। तो कुछ समय के पश्चात वो लोग फ्लाइट पे दारू वारू बांटने लगे। तो एक आदमी पहली बार फ्लाइट में आया था इंटरनेशनल, तो उसने देखा दारू बट रहा है तो इतना खुश हो गया, इतना पी गया कि वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। और ऐसा चिल्ला रहा था, लगा कि ये इंटरनेशनल फ्लाइट ने एसटी बस है। और वो ऐसा चिल्लाया, किसी को समझ में नहीं आ रहा उसको वश में कैसे लाएं। यही महिला जो मेरे पीछे बैठी थी मेरे पास आके बोलते, स्वामी जी अपने मंत्र से उसको कंट्रोल करो ना। मैंने कहा वो मंत्र से मैं खुद कंट्रोल हो जाऊं बड़ी बात है, दूसरों को क्या कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए ये जो मंत्र हमने प्राप्त किया है वो अपने इच्छाओं को अपनी भावनाओं को शुद्ध करने, नियंत्रित करने, और इस मंत्र के माध्यम से हम लोग वैष्णवों से आशीर्वाद ले रहे हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, हे भगवान की शक्ति हरे सर्व आकर्षक कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो इसलिए इस प्रार्थना के ठीक विपरीत हिरण्यकशिपु की प्रार्थना है। वैष्णव अहंकार का दमन करने का प्रयास कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु अपने अहंकार को और सशक्त बनाकर पूरे ब्रह्मांड का सबसे तेजस्वी ओजस्वी पूजनीय सत्ता शक्ति प्राप्त व्यक्ति बनने के प्रयास में। तो इसलिए हिरण्यकशिपु साक्षात मूर्तिमान अहंकार के प्रतीक हैं, मिथ्या अहंकार के वो प्रतीक हैं। तो अब क्या हो रहा है, स इत्थम निर्जित ककुप एकराड विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो नातृप्यत अजितेंद्रिय। तो हिरण्यकशिपु के पास 14 लोक के सारे देवताओं को नियंत्रण करने की शक्ति ब्रह्मा जी दे दिए, तो संपूर्ण शक्ति प्राप्त कर ली उन्होंने। तो किसी के मन में यह विचार आएगा कि अगर जिसने हर प्रकार से शक्ति प्राप्त कर ली, सत्ता प्राप्त कर ली, जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड का हर विषय वस्तु उपलब्ध है, जो उनके चरणों में चूम रहा हो, तो ऐसी व्यक्ति को और किसी वस्तु को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, वो तो सबसे संतुष्ट होगा। जिस दिशा में दृष्टि डालो हिरण्यकश्यपु उस वस्तु को उठाकर भोग कर सकते थे। एवरी सेंस ऑब्जेक्ट वॉज अवेलेबल। एक राट विषयान प्रियान, वो एकमात्र बलिष्ठ शक्तिशाली नरेश थे विषयान प्रियान और विषयों के भोग में लीन। यथोपजोषम भुंजानु, जितना भोग चाहिए कर सकते थे, लेकिन न अतृप्यत अजितेंद्रिया, लेकिन उनके हृदय में एक विशाल गहरा अथाह खोखलापन था, जिसको वो न समझ पा रहे थे न उसको ढक पा रहे थे। केवल इतने विशाल खोखलेपन के बहुत बड़े गड्ढे में गिरकर परेशान थे। यथोपजोषम भुंजानो नातृप्यत अजितेंद्रिया, अतृप्त थे, लिंगरिंग डिससेटिस्फैक्शन। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। यत श्रृण्वतो अपैति अरतिर वितृष्णा सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंस भक्तिम हरौ तत् पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्यसे चेत। भागवत वर्णन करता है कि कृष्ण कथा सुनने के 5 परिणाम हैं। आप लोग शांति से बैठकर, प्रेम से बैठकर कथा सुन रहे हो, कितनी तल्लीनता के साथ सीरियसली कथा सुन रहे हो, आपके इस श्रवण के प्रति लगन को देखकर मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है, और लग रहा है कि 6 बजे क्या रात के 12 बजे तक कथा सुनाए, लेकिन नहीं सुनाएंगे, चिंता मत करो। तो यहां पर 5 प्रमुख परिणाम कथा के क्या बताए हैं, यत श्रृण्वतो अपैति अरतिर, कथा सुनते जाने पर कथा सुनने के प्रति अरति डिस्टेस्ट चला जाता है, क्योंकि सुनने की जब आदत नहीं रहती, जैसे राधानाथ महाराज लेक्चर दे रहे हैं यहां पर हमारे वृंदावन में, 2003 का यात्रा था, 2001 का यात्रा था, लंबा लेक्चर दे रहे हैं, सुबह 9 बजे स्टार्ट किया 6 गोस्वामीज के ऊपर फोगला आश्रम में, 12:30 तक तो हम लोग ने पीछे प्रसाद लगाना स्टार्ट कर दिया। अब हमको लगा 12:30 हो गया तो मैक्सिमम 1 बजे तक चलेगा, तो प्रसाद काउंटर के लगाने की आवाज सुनकर कई लोगों का ध्यान वहां चला गया, और उन्होंने सोचा कि चलो भाई सही जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने भी फोगला आश्रम के वो गेट के बाहर एक पेड़ है, वहां जाके बैठ गए। ऐसा लगा किसी को समझेगा नहीं क्यों बैठे हैं। तो उनको देख के बाकी लोग भी उत्साही हो गए, धीरे धीरे 100-200 लोगों की लाइन लग गई, और सब गेट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी बोलेंगे प्रभुपाद की जय और उसके बाद शुरू होगा और हम लोग टूट पड़ेंगे। तो 1 बजे महाराज ने प्रवचन को थोड़ा विराम देकर पूछा, शैल आई कंटिन्यू। ये सुन के अब बाकी लोग क्या थे, अपने लोग तो ट्रेंड ही है बोलने के लिए हरि बोल, महाराज कुछ भी बोले वो हरि बोल ही बोलते, तो हरि बोल बोल दिया। और मैं ये लोगों को देख रहा था, ये 200 लोग क्या करेंगे, वो भी बेचारे हरि बोल बोल रहे हैं, दूसरा कोई चारा ही नहीं। फिर 3:30 बजे वापस एक बार पूछा, शैल आई कंटिन्यू, और लेक्चर समाप्त हुआ 4 बजे। तो इसलिए अब आपको लगेगा हम लोग यात्रा में इतना जाते हैं, कथा सुनते हैं, इससे क्या हो रहा है? कथा सुनने की इच्छा बढ़ती है और अरति डिस्टेस्ट धीरे धीरे समाप्त होता है, क्योंकि हर वस्तु को खाने के बाद ही उसमें टेस्ट डेवलप होता है, तो बिना उसका सेवन किए उसके प्रति टेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो यत श्रृणवतो अपैति औरतिर वितृष्णा, तो वितृष्णा शब्द का अर्थ है कि कृष्ण कथा सुनने पर क्या होता है कि भौतिक तृष्णाएं नष्ट होती हैं, भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं। और तीसरा, सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसा, सत्वगुण की वृद्धि होती है। चौथा, भक्तिम हरौ, भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति, भक्ति तत्व के प्रति इच्छा जागृत होती है। भक्तिम हरौ चौथा, और पांचवा, पुरुषे च सख्यम, वैष्णव भक्तों के प्रति हम लोगों का एक स्वाभाविक स्नेह उत्पन्न होता है। तो जब हम बैठकर एकत्रित होकर कथा सुनते हैं तो उस केवल कथा श्रवण की प्रक्रिया से वैष्णवों के बीच एक स्नेहिल संबंध स्वाभाविक रूप से स्थापित होता है। तो इसके कारण हर वर्ष कितने वर्षों से महाराज यात्रा लेके जाते हैं और हम लोगों के अलग अलग उत्सवों में लेक्चर्स होते हैं, प्रोग्राम्स में लेक्चर्स होते हैं। कृष्णेर यतेक अखिला सर्वोत्तम नरलीला नरवपु यहार स्वरूप, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते रहने से हृदय शुद्ध रहता है। मुझे याद है कि बहुत वर्ष पूर्व महाराज जन्माष्टमी का एक इतना लंबा लेक्चर दिए, वो लेक्चर के बाद हम लोग आए आश्रम में धड़ाम करके गिर के सो गए। 6 घंटे के लेक्चर के बाद कुछ ताकत बची नहीं, लेक्चर वो दिए, थक हम गए। और महाराज अंदर प्रवेश कर गए आश्रम में और सब 4-5 लोग तो पूरा खर्राटे मार रहे थे, और मैं सोने जा ही रहा था, अचानक महाराज आके बोले, ये क्या चल रहा है, इतना मैंने लंबा लेक्चर दिया और उसके बाद ये लोग ऐसा कर रहे। मैंने कहा क्या करें, आज जन्माष्टमी का दिन है, शाम को सेवाएं बहुत है, थोड़ा हम लोग एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। तुमने कहा वो तो ठीक है, अभी मैंने इतना लंबा कृष्ण लीला सुनाया और आप लोग महाविष्णु लीला कर रहे हो। तो इसलिए कृष्ण कथा सुनने पर उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत होना, ये वास्तव में हमारे बढ़ते हुए भक्ति का परिचय देता है। आगे, हिरण्यकशिपु हर प्रकार से अत्याचार करना आरंभ किए और उनके अत्याचार से परेशान होकर सारे देवतागण भगवान श्री विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। और निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहरादाय यदा दुर्हुयेत हनिष्येपि वरोर्जितम्। भगवान विष्णु उनको कहते हैं, चिंता मत कीजिए, आप लोग सभी अपने अपने स्थान में चले जाइए, हिरण्यकशिपु अपने मृत्यु का कारण स्वयं बनेगा, वो निर्वैराय है, प्रशांताय है। जब ऐसा प्रशांत और बिना शत्रु का पुत्र प्रहलाद के प्रति प्रहरादाय यदा द्रुहियेत, जब द्रोह करेगा हिरण्यकशिपु, हनिष्येपि उसकी मृत्यु निश्चित होगी, वर अर्जितम्, भले ब्रह्मा जी ने प्रचंड वर उनको दिए हैं लेकिन वैष्णव अपराध के विशाल सागर में चाहे कितना भी फुर्तीला तैराक क्यों न हो वो तैर नहीं सकता, वैष्णव अपराध के दलदल में वो अवश्य डूब कर मरेगा। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। चैतन्य मंगल सुन यदि पाषंड यवन सेह महावैष्णव होय तत्क्षण। मनुष्य रचिते नारे ऐचे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो इसलिए इन कथाओं और कीर्तन के माध्यम से जन सामान्य का चित्त शुद्ध होता है। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा, जगाए मधाई पर्यंत अन्येर का कथा। तो महाप्रभु की ऐसी कृपा है कि जगाए और मधाई से लेकर उच्चतम स्तर के पंडितों को महाप्रभु शुद्ध किए, अपने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में समाविष्ट किए। तो इसलिए अब हिरण्यकश्यपु का आगे का वृत्तांत बताते हैं। और नारद मुनि कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु के मन की महत्वाकांक्षा थी कि उनका पुत्र प्रहलाद वो बहुत बड़ा राजनीति में विद्वान बने। राजनीति का अर्थ होता है मित्र और शत्रु में दुनिया का विभाजन। राजनैतिक दृष्टिकोण क्या होता है कि हम जगत के हर व्यक्ति को इन दो श्रेणियों में देखते हैं, क्या ये मेरा मित्र है अथवा क्या मेरा ये शत्रु है। तो पिता और पुत्र में दृष्टिकोण का युद्ध छिड़ गया था। इट वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। पिता चाहते थे कि पुत्र दुनिया को मित्र और शत्रु के दृष्टिकोण से देखे, और पुत्र की इच्छा थी कि मैं संपूर्ण जगत को भगवान श्री कृष्ण की ही ऊर्जा के रूप में देखूं, हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का अंश के रूप में देखूं, अपने सुहृद के रूप में देखूं। तो ये दृष्टिकोण का मतभेद था, शिक्षा प्रणाली का मतभेद था। इसलिए कहा गया है 1991 में नरसिंह राव ने, प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव ने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। तो कहा जाता है भारत में 1991 में लक्ष्मी लिबरेट हो गई, लेकिन अभी तक 2018 तक सरस्वती लिबरेट नहीं हुई, क्योंकि शिक्षा प्रणाली अभी भी जंजीरों में बंधी हुई है। विश्व में 7 बिलियन लोग हैं, और ये 7 बिलियन लोग में 31% लोग क्रिश्चियन हैं, 31%, 23% मुस्लिम हैं, 16% एथिस्ट एग्नोस्टिक हैं, 15% हिंदू हैं, 7.5% बुद्धिस्ट हैं। लेकिन आज पूरे भारत भर में आप जो 15% हिंदू, अर्थात 1 बिलियन पीपल, 122 करोड़ लोग, और उसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ लोगों की हिंदू पॉपुलेशन है इंडिया में। आप भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्था में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर हिंदू धर्म में पीएचडी नहीं कर सकते। ये हमारे देश की दुर्दशा है। आप अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में हिंदुइज्म में पीएचडी कर सकते हो, लेकिन हिंदुइज्म शब्द नाम सुनकर लोग झटका खाएंगे। तो इसलिए ये मतभेद है शिक्षा प्रणाली का। और पिता और पुत्र और हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद के बीच जो मतभेद था, ये इस शिक्षा को लेकर। हिरण्यकश्यपु लगे पड़े थे भौतिक शिक्षा के पीछे। भौतिक शिक्षा का अर्थ क्या है? हाउ टू एडजस्ट सर्कमस्टेंसेस, बाहर की व्यवस्था को कैसे नियंत्रित करें, परिवर्तित करें, सुधारें। तो पिता चाहते थे कि बेटा तू केवल परिस्थिति सुधार में ध्यान दे, और बेटा चाहते थे नहीं, मैं परिस्थिति सुधार में नहीं, अपनी चेतना को सुधारने में अपना ध्यान देना चाहता हूं। तो इसलिए पिता और पुत्र में इन पॉइंट्स को लेकर मतभेद जो चला लाखों वर्ष पूर्व, वो आज भी घर घर में द्वंद्व चल रहा है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का हर पन्ना आप और हमारे जीवन के हर दिन के मसलों पर टिप्पणी कर रहा है। और इसलिए इसको कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं मानकर अर्वाचीन समस्याओं को समाधान करने के लिए प्राचीन काल में ही सन्निहित ज्ञान मानना चाहिए। तो इसलिए यहां पर पिता, जैसे कविचंद्र महाराज किताब वितरण कर रहे थे फिलाडेल्फिया अमेरिका में, तो उसने किसी बंदे को बुक दिखाया, उसने बुक देखा, पूछा क्या है बुक में, तो बोले वो बुक का नाम था बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। उन्होंने कहा ये बुक पढ़ोगे सो यू विल गो बियॉन्ड डेथ, ऐसा बोल के वो चले गए। 10 मिनट में पुलिस आ गई और उनको अरेस्ट कर ली, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। महाराज पूछ रहे अरे मैंने क्या किया, तो बोले किसी आदमी ने फोन किया, बोला ये मुझे मारना चाहता है। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ बोला तो उसको लगा ये मेरे को मारने के लिए है। ये है कलयुग। तो इसलिए कलयुग में लोगों को वास्तविकता क्या है इसको समझाना बड़ा कठिन है। तो इसलिए यहां पर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक दिन शंड और अमर्क के स्कूल में डाल दिया। उस समय सबसे प्रसिद्ध कॉलेज था शंड अमर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसमें जो जाए उनका एम्प्लॉयमेंट गारंटीड था। तो सबसे बड़े बड़े असुर और उनके पुत्र वहीं जाया करते थे। तो हिरण्यकश्यपु को और अपने पुत्र को वहां बिना कैपिटेशन फीस के एडमिट करा दिया, और फिर शंड और अमर को उसको शिक्षा देने के पश्चात हिरण्यकश्यपु को लगा थोड़ा हम इनके शिक्षा की प्रगति को देखते हैं। हर पिता के मन में अपने संतान के शिक्षा के प्रगति के विषय में चिंता होती है, स्वाभाविक है। हिरण्यकश्यपु के मन में भी था, करोड़ों लोगों की हत्या की थी लेकिन अपने एक शिशु प्रहलाद के प्रति तो विशेष स्नेह था। गोद पे बिठाया और बोला बेटा प्रहलाद बता तूने अपने शिक्षा में सबसे श्रेष्ठ क्या तत्व पढ़ा है। तो प्रहलाद महाराज जी उत्तर देते हैं तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग्न धियाम असद्ग्रहान हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को कहते हैं अरे असुरों में श्रेष्ठ आप इंद्र तृतीय की भावनाओं को छोड़कर आप जाइए, हरि का आश्रय लीजिए, यहां क्या बैठकर सत्ता जमा के बैठे हो, जाओ थोड़ा यात्रा करके आओ, वृंदावन में जाओ। इस तरह उनको कहते हैं वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार ऐछे ग्रंथ करिते हो तारिला संसार। तो इसलिए जब तक हम वृंदावन धाम क्या है नहीं समझ सकते, भक्ति को नहीं समझ सकते। आगे प्रहलाद महाराज की बात को सुनकर हिरण्यकश्यपु बड़े क्रोधित हो उठते हैं, पूछने लगते हैं तुमने किससे सुना भाई, कहां सुना, कैसे सुना, क्यों सुना। तो उस समय प्रहलाद महाराज उनको बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं कि वास्तव में आप, हाँ प्रहलाद महाराज उस समय उत्तर नहीं देते, हिरण्यकश्यपु शंड और उमर को बुला के कहते हैं कि थोड़ा देख लो क्योंकि लगता है कि वेश बदल कर भक्त लोग आकर तुम्हारे कॉलेज में प्रचार कर रहे हैं, बच के रहना ये हरे कृष्णा वाले हैं, खतरनाक है, सावधान। तो कभी कभी प्रचार में वेश बदल के भी जाना पड़ता है। एक बार मैं कोई दूसरे देश से वहां के देश के परिस्थिति के कारण पैंट शर्ट में जाना पड़ा, तो पैंट शर्ट पहन के लौट के आ रहा था तो इमिग्रेशन में एक इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा था, वो पहले आत्मा सीरियल देखता था, मुझे देख के पहचान गया और झटका खाया और बोला, महाराज सब छोड़ दिया क्या? मैंने कहा नहीं नहीं प्रचार करके ही आ रहा हूं। बोले ये क्या? हमने कहा वो वहां पर सैफरन पहनना मुश्किल है इसलिए ऐसे आ गए। बोले ओ हो, मुझे तो चिंता हो गई थी। बोले मैंने कहा इसलिए हम लोग पहने रहते हैं जिससे लोग देखते रहे। तो कभी कभी प्रचार कार्य में इस प्रकार कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज ने इस तरह जब उत्तर दिया तो शंड और अमरक प्रहलाद को लेके गए और पूछे कि भाई तेरे को सिखाया किसने ये सब? हमने तो नहीं सिखाया, ये तो अपने सिलेबस के बाहर का आइटम है, ये कहां से आ गया? ये कोर्स में है नहीं। हाँ, CBSE का सिलेबस छोड़ के तुम इंटरनेशनल ICSE क्यों कर रहे हो? एग्जाम में पास होना है कि नहीं? तो प्रहलाद बिल्कुल अलग व्यक्ति थे। वो बोले देखिए, स्वयं आकर्ष सन्निधौ न तते न तथा भिद्यते चेतश्चक्र पाणेर इदृच्छया। भगवान मुझे आकस्मिक रूप से आकर्षित कर रहे हैं जैसे चुंबक को लोहा आकर्षित करता है। मैं सोच रहा हूं आप आकर्षित क्यों नहीं हो रहे। तो आनियताम अरे वेत्रम, बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं मारेंगे तुमको पकड़ के। फिर और शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। फिर हिरण्यकश्यप कहता है चलो भाई सेकेंड राउंड ट्राई करते हैं। पहला सेमेस्टर में तो फेल था, अभी दूसरे सेमेस्टर में कुछ सुधार हुआ कि नहीं, क्योंकि पीरियोडिक चेक करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप बड़ा रेस्पॉन्सिबल पेरेंट था, तो फिर प्रहलाद को लेकर गोद में बिठाया और पूछा बता तूने क्या सीखा। अब इस बार उन्हें और अलग अलग श्लोक सुना दिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। कि ये जो नवविधा भक्ति है ये सबको करना चाहिए पिताजी, हम भी करते हैं। अब सीधा बोल रहे हैं, हिरण्यकश्यप के मुंह पे से तो तमाचा था। तो फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा कि ये तुमको सिखा कौन रहा है? तो कहते हैं मतिर्न कृष्णे परत स्वतोवा मिथो भी पत्यत गृह व्रतानाम। आप जैसे लोग हैं जो दूसरा कुछ बोले तो भी आपने व्रत लिया है मैं जीवन के बाद नरक में जाके ही रहूंगा, आपको कौन सुधारेगा? तो आपने तो व्रत लिया है नरक में जाने का। नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, आप नहीं समझ सकते कि आपकी वास्तविक गति क्या है। और इसलिए नैषाम मति तावत उरुक्रमांग्रिम स्पर्शत यावत महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। कि महात्माओं के चरणों के रज का अभिषेक करके कुछ मस्तिष्क सुधरेगा, आइए अभिषेक करते हैं पिताजी वैष्णवों के चरणों के रज का। किसको कह रहे हैं? हिरण्यकश्यप को। सोचिए। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ये नहीं सोच रहे थे कि हिरण्यकश्यप क्या सोचेंगे, उन्होंने यही सोचा जो सत्य है वो मुझे प्रकाशित करना है बिना कॉम्प्रोमाइज के। और इसलिए उनको अच्छा लगे न लगे मुझे बोलना ही पड़ेगा, है कि नहीं? एक बार एक ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जन प्रवेश किए हाथ में माला लेके, फूल माला लेके प्रवेश किए। अब बिस्तर पर लेटा हुआ था पेशेंट जिसकी सर्जरी होने वाली थी, डॉक्टर को देख के घबरा गए, बोले डॉक्टर हाथ में वरमाला लेके क्यों आए हो? डॉक्टर बोला अगर सर्जरी सफल हो तो मेरे लिए, नहीं हुआ तो तेरे लिए। तो चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो थोड़ी गारंटी दे सकता है कि आपकी हमेशा जान बचेगी। तो जीवन और मृत्यु ये अपने हाथ में नहीं, लेकिन भगवान का चिंतन ये हमारे हाथ में है। इसलिए हिरण्यकश्यप और प्रहलाद में मतभेद इसी का था। हिरण्यकश्यप वॉज फोकस्ड ओनली ऑन एडजस्टिंग सर्कमस्टेंसेस, और उसको लगता था यही सफलता है, और प्रहलाद का फोकस था एडजस्टिंग कॉन्शियसनेस। तो इसलिए मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ का ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग सबको होना चाहिए। मटेरियल एजुकेशन मींस हाउ यू कैन मैनिपुलेट सर्कमस्टेंसेस व्हिच इज नीडेड। स्पिरिचुअल लाइफ मींस हाउ यू कैन मैनिपुलेट एडजस्ट कंट्रोल कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद ने स्टार्ट किया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर इस प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस को भी हमको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन उस चक्कर में हम इतना मग्न न हो जाएं कि हम अपने मूल तत्व को भूल जाएं कि हमारा मेन बिजनेस कॉन्शियसनेस में है कि नहीं। डॉक्टरों का काम है अस्पताल चलाना, अस्पताल चलाते चलाते अस्पताल के एक कोने में जूस सेंटर भी कभी कभी चला लेते हैं, जिससे कि रिश्तेदार लोग आए वेटिंग में रहें तो कुछ समोसा वड़ा डोसा जूस वगैरह खा लें। हर अस्पताल में एक होता है स्नैक सेंटर, लेकिन डॉक्टर लोग दिन रात उस स्नैक सेंटर को चलाने में और उसको किस तरह बढ़ाने में सोचते रहे, और धीरे धीरे मालूम पड़ा अस्पताल ही होटल बन गया। सो दैट इज कॉल्ड डिविएशन। तो वैसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हैं, भावना हमारा मेन बिजनेस है, और उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी दूसरा कुछ करना है वो उसके अंतर्गत होना चाहिए। आगे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने अलग अलग प्रकार से विध्वंस करने का प्रयास किया। अभी कभी उसको ऊपर पर्वत से उठा के पटका, सागर के अंदर डुबाने का प्रयास किया, सर्पों के द्वारा डसकर समाप्त करने का प्रयास किया, अलग अलग रूप से वो प्रयास किया, लेकिन सब विफल हुआ। और तत्पश्चात प्रहलाद महाराज बारंबार प्रयास करने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, तो हिरण्यकश्यपु घबरा गया और सोचने लगे ये है कौन लड़का, इतना भयंकर प्रयास करने पर भी वो जीवित है। और प्रहलाद बड़े आराम से अपने मित्रों के साथ बैठकर भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, और वो मित्रों को बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने नारद मुनि से अपने मां के गर्भ में यह भगवत ज्ञान सुना, क्योंकि सारे मित्र कहते हैं ये तो हम लोग षंड और अमर से कभी सुने नहीं, आप जो सुना रहे हो ये भक्ति का ज्ञान ये कहां से सुना। बोला अरे मां के गर्भ में था तभी सुन लिया था। तो इसलिए हर व्यक्ति को कभी ना कभी कहीं ना कहीं भगवत भक्ति के ज्ञान को सुनने का अवसर मिलता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि उस ज्ञान को सुनने के बाद हम उसको किस तरह प्रयोग करें। तो एक वास्तविक सत्य घटना है कि एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात देखी कि एक टीवी का प्रोग्राम जब चलता था तभी वो बच्चा चुप होता था, नहीं तो रोता ही रहता था। बाद में मालूम पड़ा कि जब वो गर्भवती थी तो बार बार वो टीवी का प्रोग्राम देखती रहती थी, उसके कारण बच्चे को मां के गर्भ में उसका टेस्ट लग गया। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का टेस्ट कब से लगता है, गर्भस्थ अवस्था से। इसलिए यहां पर प्रहलाद महाराज आगे असुरों के स्कूल में संकीर्तन कर रहे हैं, और हिरण्यकश्यपु उनका क्रोध बढ़ता चला जा रहा है, और हिरण्यकश्यपु पूछ रहे हैं कि भैया किसकी शक्ति से तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया, कौन है वो व्यक्ति जो आपको इतना बल दे रहा है। तो प्रहलाद कहते हैं वो भगवान जो मुझे शक्ति दे रहे हैं पिताजी आपको भी वही शक्ति दे रहे हैं। कहाँ है वो, सर्वत्र है, अणु अणु में है, दो अणु के बीच स्थान में है, हर परमाणु के भीतर है, वही इस जगत को बनाए रखे हैं। तो प्रहलाद महाराज के मुख से इस बात को सुनकर हिरण्यकश्यपु इतने क्रोधावेश में आ गए, अपने हाथ में तलवार लिए और सामने खड़े हुए एक स्तंभ को देखकर विकराल स्वर में चिल्लाए, अरे प्रहलाद, अगर तू कहता है कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है तो क्या इस स्तंभ के अंदर भी तेरे भगवान है? और प्रहलाद महाराज को तो साक्षात नरसिंहदेव भगवान दिख रहे थे अंदर। तो प्रहलाद महाराज पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोले, हां बिल्कुल हैं, स्तंभ के अंदर खड़े हैं। और हिरण्यकश्यपु अपने ही मौत को स्वागत करते हुए तलवार उठाए और तलवार और मुष्ठी को लेकर सीधा आक्रमण किया, उस स्तंभ को तोड़ डाला और अंदर से गरजते हुए निकले, भगवान नरसिंहदेव, नरसिंहदेव भगवान की। जैसे नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अति अद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान श्री नरसिंहदेव अपने भक्त की वाणी को सार्थक करने, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, जो उनके भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ मैं सर्वव्यापी हूं, जो उनके भक्त ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ हिरण्यकश्यपु की मृत्यु इन परिस्थितियों में नहीं होगी, जय और विजय को जो उन्होंने वाणी वचन दिया था, इन सभी वचनों को पूर्ण करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, भगवान एक अभूतपूर्व रूप में प्रकट हो गए, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, वो न मृग था न मनुष्य था। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने अपने नेत्रों के कनखियों से देखा, ये कौन है हमारे सामने विकराल स्वरूप धारण करके खड़े हैं, मीमांसमानस्य समुत्थितोग्रतो नरसिंह रूपम तदनम भयानकम प्रतप्त चामी कर चंडलोचनम, देखकर वो घबरा गए कि ऐसे तपाए हुए लोहे की भांति उनका नेत्र इस तरह चमक रहा था और उनके हाथों में विविध प्रकार के आयुध थे, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, उनके असीमित शक्ति उनके शरीर और अंग प्रत्यंग के हर भाग से छलक रहा था, साक्षात मूर्तिमान शक्ति के प्रतीक थे भगवान नरसिंह देव। अपने भक्तों को अभय दान देने के लिए सनातन काल के लिए यह स्वरूप धारण करके वो प्रकट हुए, अदृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्वहन। भगवान कहते हैं हमारे वैष्णव भक्तों को संरक्षण देना, अपराधियों को समाप्त करना मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसके लिए मैं अभूतपूर्व रूप भी धारण करने के लिए तैयार हूं, हर प्रकार के नियम भंग करके मैं किसी भी रूप में प्रकट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इस बात से वचनबद्ध हूं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो इसलिए जैसे ही वो प्रकट हुए, घमासान युद्ध आरंभ हो गया हिरण्यकश्यपु और उनके बीच। जस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, ये हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को प्रश्न पूछा था, अगर आपके भगवान सर्वत्र हैं तो क्या इस स्तंभ के भीतर भी हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न था, मदन्यो जगदीश्वर, मुझे छोड़कर दूसरा ईश्वर, मुझे छोड़कर दूसरा। तो मेन पॉइंट हिरण्यकश्यपु का ये था। तो हिरण्यकश्यपु का अगर साइको एनालिसिस किया जाए तो उसका वीकनेस कहां था? वो यहां था, मदन्यो जगदीश्वर, मेरे अन्य दूसरा कोई ईश्वर कैसे हो सकता है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, छटपटा जाता था। अर्थात उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका अहंकार। भक्तिवेदांत अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में नरसिंह देव का फोटो लगा बहुत साल पहले, और उस फोटो को देखकर एक बार पेशेंट जो था उसको एनेस्थीसिया देने वाले थे, बाहर का आदमी था, भक्त नहीं था, पेशेंट की दृष्टि गई वो फोटो के ऊपर, फोटो को देख के घबरा गए, नरसिंह देव चीर रहे, डॉक्टर को देख के पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या चल रहा है यहां, फोटो में क्या दिखा है? डॉक्टर भी डिवोटी थे, चांस नहीं छोड़ा, बोले ये वास्तव में इतिहास का पहला सर्जरी है। तो पेशेंट बोले सर्जरी का नतीजा क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट लिबरेटेड। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखिए ये अहंकार धरती पे नष्ट नहीं हो सकता, आसमान में अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। अहंकार का नाश दिन में नहीं, रात्रि में नहीं, अहंकार का नाश किसी जीवित और मृत व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं। अहंकार का नाश 84 लाख योनियों में चलते हुए किसी जीव देवधारी के द्वारा संभव नहीं। ये अहंकार किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इस अहंकार को दमन करने के लिए साक्षात भगवान को प्रकट होना पड़ता है। नरसिंहदेव भगवान ने विचार किया, युद्ध करते करते चीख रहे थे, हजारों हाथियों की आवाज निकाल रहे थे, और हिरण्यकश्यपु कभी जीतते कभी हारते, और इस दृश्य को 33 कोटि देवता देख रहे थे बादलों के पीछे से। देवता निपट डरपोक हैं, सामने आने घबराते हैं, क्योंकि उनको लगा कि बाय चांस अगर हिरण्यकश्यपु ने देख लिया कि हम लोग नरसिंहदेव के पक्ष में और तालियां बजा रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, और हिरण्यकश्यपु घड़ी घड़ी देखता था कौन कौन देख रहा है और कौन कौन किसका साथ दे रहा है, हिरण्यकश्यपु भी नोट करता था। तो बोले अगर हिरण्यकश्यपु ने अपना नेगेटिव नंबर नोट कर लिया और बाय चांस बच गए तो बाद में तो खटिया खड़ी कर देगा। मतलब नरसिंहदेव के रूप को देखकर भी देवताओं को पूरा विश्वास नहीं था कि वो जीतेंगे, उनके श्रद्धा के अभाव की सीमा को देखो। तो इसलिए बादलों के पीछे से देख रहे थे कि जैसे ही हिरण्यकश्यपु ऊपर करे वो छुप जाते थे। फिर वो भगवान से प्रार्थना करे, अरे बहुत समय हो गया बाबा, हमको टेंशन आ रहा है, मार ही डालो उसको। तब भगवान नरसिंहदेव भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि संध्या का वेल कब होगा, सूर्यास्त कब होगा। और जब सूर्य ढलने लगा और देखा कि अब संध्या का समय हो गया, उस समय भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु के ही राज प्रासाद के द्वार पर लेके गए, जो कि बाहर नहीं अंदर नहीं। और फिर नरसिंहदेव भगवान ने उन्हें अपने गोद पे बिठाया, जो आसमान में नहीं धरती पे नहीं। और फिर हिरण्यकश्यपु के पेट को, उदर को उन्होंने अपने हाथ के नाखून से चीर डाला, जो कि जीवित नहीं और मृत नहीं। और इस प्रकार नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकश्यपु को समाप्त किया। नरसिंहदेव भगवान की वो ताकत, वो शक्ति जो नरसिंहदेव भगवान के नाखून में है, जिससे उन्होंने हिरण्यकश्यपु के उदर को फाड़ डाला, वही नाखून की ताकत वैष्णवों के जिह्वा के अग्रभाग में होती है, उनके आदेशों के माध्यम से, उनकी इच्छाओं के व्यक्त करने के माध्यम से। तो वैष्णव जब इच्छा व्यक्त करते हैं, उस इच्छा के अंदर वो नरसिंहदेव के हर प्रकार के अड़चन बाधा अहंकार को नाश करने की शक्ति होती है। तो इसलिए जैसे ही हिरण्यकश्यपु का नाश हुआ, नरसिंहदेव ने जैसे उसका उदर फाड़ा, उसके पेट के अंदर का सारा रक्त सीधा ऊंट के ऊपर फव्वारे के रूप में आया। भगवान नरसिंहदेव का संपूर्ण मुख उस रक्त से सन गया, और फिर नरसिंहदेव चिल्ला चिल्ला कर उसका चीर फाड़ करने लगे। नरसिंहदेव ने सोचा, इतना बड़ा पराक्रम का कार्य किया हूं, कोई मुझे माला आके नहीं पहना रहा, विजयी घोषित नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, माला की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। हाथ हिरण्यकश्यपु के पेट के अंदर डाला और उसका ही इंटेस्टाइन निकाल के उठा के गले में डाल लिया। बोला, कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। और फिर हिरण्यकश्यपु के मृत शव को हटाने के पश्चात हिरण्यकश्यपु के द्वारा ही स्थापित उनके राज सिंहासन पर बैठे। बोले, जय विजय ने बड़े प्रेम से मेरे लिए सिंहासन तैयार किया, मेरा कर्तव्य बनता है उसको स्वीकार करें। और हिरण्यकश्यपु के अनुयायी इतने निपट मूर्ख थे कि वो भागे भागे आए आक्रमण करने, देखा नहीं कि इनका क्या हुआ। आशा अमर है और उनके मन में भाव था कि हम लोग इनको पराजित करेंगे। हिरण्यकश्यपु ने एक एक की बोटियां काट डाली और फिर सारे देवता आ आकर कंफर्म कर लिया, सब मर गए ना, उसके बाद देवता है। और देवता सामने आकर एक के बाद स्तुतियां करने लगे और तत्पश्चात देखा कि नरसिंहदेव अभी भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, शांत नहीं हो रहे। देवता दूर से अपनी प्रार्थना व्यक्त कर रहे थे, देवता घबरा गए, बोले, यार ये तो शांत हो ही नहीं रहे, और अगर इनका क्रोध बढ़ता चला गया तो लगता है क्रोधांध में वो देखेंगे नहीं कि हम हिरण्यकश्यपु के पक्ष के नहीं, विपरीत पक्ष के हैं, हमको भी असुर मानकर कहीं हमको ना मार डाले। तो सब बोले, जल्दी करो, आग कहीं भी लगे उसको बुझानी चाहिए। तो नरसिंहदेव के क्रोध को ठंडा करना आवश्यक है। कौन है कौन है, एक दूसरे को देखने लगे, कोई आगे आने को तैयार नहीं। सब लक्ष्मी देवी को बोले, आप जाओ। बोले, नहीं भैया, पति को कभी इस रूप में नहीं देखा। ब्रह्मा जी को देखकर बोले, ये आपकी करतूत है। ब्रह्मा जी प्रहलाद को देखकर बोलते, तुम्हारे पिताजी की करतूत है, जाओ प्रहलाद आगे जाओ। और प्रहलाद महाराज बड़े विनम्रता पूर्वक आगे गए और उनकी नम्रता प्रधान थी। प्रहलाद महाराज ने ये नहीं सोचा, ये सेवा कोई नहीं कर पा रहा, देखो हम कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो वीडियो लो, इसका भविष्य में काम आएगा। प्रहलाद महाराज निकल गए अपने आप चुपचाप और सीधा भगवान के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। ये है प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं। मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतौजस् तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तु तोष भगवान् गजयूथ पाय प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभो आपको धन से, उच्च जन्म से, रूप से, तप से, हर प्रकार के विद्या ऐश्वर्य तेज प्रभाव इत्यादि से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आपको संतुष्ट करने के लिए एक ही उपाय है, भक्तिया तुतोष, केवल भक्ति से आपको संतुष्ट किया जा सकता है। गजयूथ पाए, जैसे गजेंद्र जी ने आपको संतुष्ट किया बिना किसी शैक्षणिक योग्यता या विद्या के। फिर वो कहते हैं, प्रभो मैं केवल उन लोगों के विषय में चिंतित हूं जो इस जगत में रहकर अपनी इंद्र तृप्ति की योजना बना रहे हैं, और इसलिए उनका उद्धार किए बिना मैं नहीं जाना चाहता। मैं केवल अपनी विमुक्ति के पीछे पागल नहीं हूं। और ये श्रील प्रभुपाद जी का बड़ा फेवरेट श्लोकों में से था और ये प्रभुपाद जी और महाप्रभु के प्रीचिंग मिशन का प्रतिनिधित्व करता है ये श्लोक। नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्या त्वद् वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढान। तो कहते हैं, शोचे, मैं शोक कर रहा हूं, किनके लिए? विमुख चेतस, जो आपसे विमुख हैं और इसलिए उनका उनके विषय में शोक करते हुए माया सुखाय भरम उद्वहतो, जो माया सुख को ढोते हुए सोच रहे हैं कि हम कितना बड़ा पराक्रम कर रहे हैं, उनके लिए मैं शोक कर रहा हूं। सवार सम्मान करता कोरेन सवार हित, कौटिल्य मात्सर्य हिंसा न जाने तारचित, श्री कृष्णेर साधारण सद्गुण पंचास, तार यश गुण सर्वे जगते प्रकाश, वैष्णवेर गुणग्राही न देखे दोष, काय मने वाक्य करे वैष्णव संतोष, चैतन्य नित्यानंद तार परम विश्वास, चैतन्य नित्यानंद तार परम उल्लास। तो इसलिए यहां वर्णन किया गया है कि जब तक हम वैष्णवों के गुणों को ग्रहण कर वैष्णवों के गुणों का ग्राही नहीं बनेंगे, तब तक हम लोगों का उद्धार नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रहलाद महाराज जैसे गुण अपने जीवन में उतारे। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेशु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुद्रिक दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहितासुरासुरा। प्रहलाद महाराज असुर के घर पे जन्म लिए, लेकिन उनके अंदर असुर के कोई गुण नहीं थे। प्रहलाद महाराज के इस जीवन काल में, भविष्य काल में, किसी भी अवस्था में भोग करने की इच्छा अभिलाषा नहीं थी। वो केवल परहित के लिए, परोपकार के लिए समर्पित थे। परीक्षा करिते गोपाल कोयला आज्ञादान, परीक्षा होइला शेषे होइला दयावान, बहु परिश्रम चंदन रेमुणा अनिला आनंद बड़ेला माने दुख न गणिला। तो हमें चाहिए कि निरंतर हम निस्वार्थ सेवा भाव से परोपकार करने का ही प्रयास करें। इस प्रकार प्रहलाद महाराज को देखकर नरसिंहदेव भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने हस्त कमल प्रहलाद महाराज के ऊपर रखते हैं और तब प्रहलाद महाराज को कहते हैं, आप कुछ वर मांगिए। प्रहलाद कहते हैं, प्रभो हम असुर हैं और असुरों की प्रकृति होती है भोग की तरफ, और आप इस तरह प्रलोभन दे रहे हो, उचित नहीं है, कहीं मेरा मन फिसल न जाए। लेकिन भगवान कहते, नहीं आप मांगिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं एक ही इच्छा करता हूं कि भौतिक इच्छाओं से हम विहीन हो, आपकी सेवा में हम तत्पर रहें और मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। तब नरसिंहदेव भगवान कहते हैं, त्रिसप्ति भी पिता पूता पितृ भी सहते नगा, आपके 21 पीढ़ियों का अवश्य उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार वो कहते हैं। और अगला, प्रहलाद महाराज को जब घोषित किया जाता है राजा के रूप में, तब इस संपूर्ण कथा को सुनकर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कहते हैं कि अरे प्रहलाद महाराज कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनका उद्धार करने भगवान एक विशेष रूप धारण करके आए, अ स्पेशल इनकार्नेशन ओनली फॉर प्रहलाद। क्या प्रिविलेज था, क्या फॉर्चून था, क्या सौभाग्य था, क्या विशेष कृपा मिली। ऐसा कहते कहते युधिष्ठिर महाराज मन के किसी कोने में उनको लग रहा था, अरे हमारा इतना सौभाग्य नहीं, ये स्पेशल अवतार प्रहलाद को मिला। भगवान कितना उनका विचार किए कि हर प्रकार के नियम को भंग करके उन नियमों के कितने बड़े बंधन के बीच से घुस गए नरसिंह का रूप लेकर। क्या बात है। तो जब वैष्णवगण दूसरे वैष्णवों की श्रेष्ठ सेवा देखते हैं, वो द्वेष नहीं करते, लेकिन उनके मन में यह भाव आकस्मिक रूप से आ ही जाता है कि अरे हमारे अंदर इतना गुण नहीं, इतनी योग्यता नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं, जो कृपा इनको मिली है क्या महान कृपा है, वो कृपा हमको नहीं मिल पा रही। तो हर भक्त इस प्रकार सोचता है दूसरों के कृपा पात्र सेवा को देखकर। तो इसको सुनकर नारद मुनि कहते हैं, यूयम दृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो वियंती ये शाम गृहाणाम वसते ति साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। नारद मुनि कहते हैं, अरे युधिष्ठिर महाराज आप क्या बात कर रहे हो, अरे आप लोगों के लिए तो भगवान द्वारका छोड़कर संगमरमर के हस्तिनापुर में निरंतर समय बिता रहे हैं और उनको देखने के लिए ऋषि मुनिगण तपस्या को छोड़कर सत्वगुण में जंगल को छोड़कर रजोगुण वाले राजमहल में डेरा जमा के बैठे हैं। लोकम पुनाना मुनयो वियंती, अरे सारे मुनि आपके हस्तिनापुर के दरबार में पाए जाते हैं। क्यों? गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इन मुनियों के साथ नहीं, द्वारका वासियों के साथ नहीं, ब्रजवासियों के साथ नहीं, सबसे अधिक समय बिताए पांडवों के साथ। क्यों? क्योंकि पांडव ने अपने हृदय की भावनाओं को कृष्ण की इच्छा के साथ एक कर दिया था। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत वीरा सनानुस्तवन स्तवन प्रणामान स्निग्धेशु पांडु जगत प्रणतिम च विष्णु भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। तो इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई और तब यहां पर शिवजी और ब्रह्मा इसको वर्णन नहीं कर पाए, ब्रह्मा न समझ पाए लेकिन शिवजी इसको समझ पाए और इसको समझाने के लिए नारद मुनि त्रिपुरासुर वाला बात बताते हैं कि कैसे त्रिपुरासुर को शिवजी ने समाप्त किया और तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्ति पालन कर पाए। तो नारद मुनि के सामने युधिष्ठिर महाराज, अब इतनी बड़ी कथा हो गई, इसके बाद तो युधिष्ठिर महाराज के ध्यान आना चाहिए, प्रभु राजसु यज्ञ भूल गए अपन, है कि नहीं? अभी जिसके पेट में भूख लगी हो और सामने कोई व्यक्ति खड़ा चर्चा किए जा रहा है, दो चार मिनट अपन रुकेंगे, पांच मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट, उसके बाद तो भूखा पेट बोल ही पड़ेगा। ऐसा है कि अपन थोड़ा खा लेते हैं, बाद में चर्चा रखते हैं। लेकिन युधिष्ठिर के पेट में सत्ता की कोई भूख नहीं थी, यह इस बात से स्पष्ट है कि उसका नाम ही नहीं ले रहे। 10 अध्याय हो गया जिसमें प्रहलाद महाराज का चरित्र वर्णन हो गया, युधिष्ठिर महाराज का ध्यान अब गया, अरे युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि भाई जो प्रहलाद जैसा श्रेष्ठ और हिरण्यकश्यपु जैसा शैतान दोनों नहीं है, क्योंकि इस कथा को सुनकर कई बार भक्त लोग कहते हैं, अरे मैं तो हिरण्यकश्यपु जितना गया गुजरा नहीं, लेकिन प्रहलाद जैसा भी अव्वल नहीं, अपन बीच में लटके हैं तो हमारा क्या? तो उसके लिए अगले 5 अध्याय में सुना दिया वर्णाश्रम। तो युधिष्ठिर महाराज और सुन रहे हैं, तो वर्णाश्रम में आगे वर्णों का, 4 वर्णों का और 4 आश्रम का वर्णन करते हुए फिर नारद मुनि अपनी ही कथा सुनाते हैं कि एक बार वो स्वर्ग लोक में गए किसी कार्यक्रम में, कीर्तन के लिए उनको बुलाया था, कीर्तन के बदले वो बॉलीवुड का सॉन्ग गाने लगे, तो उनको श्राप मिल गया और वो श्राप मिल गया तो वो शूद्र बने और तब जाकर शनै शनै वैष्णवों के आशीर्वाद से वो फिर वास्तव में शुद्ध हुए। तो अब 7वें स्कंद में स्वयंभो मनु का संपूर्ण साम्राज्य का विषय सुनने के पश्चात अब महाराज परीक्षित के मन में इच्छा थी कि स्वयंभू मनु एंड कंपनी को लेकर अपन 7 स्कंद निकाल दिए, अब कुछ दूसरे मनु लोग क्या किए, वो तो नहीं झक मारते होंगे, वो भी कुछ तो करते होंगे, उनके बारे में भी कुछ सुने क्या? अब परीक्षित महाराज उनके विषय में प्रश्न पूछते हैं। 8वें स्कंद का ये विषय है। 7वें स्कंद के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे 8वें स्कंद में। तो पहले चार मनुओं का यहां पर वर्णन इस टेबल में हम देख पाएंगे। तो देखिए, आप लोगों को एक ये टेबल समझा दूंगा, क्योंकि आप लोग जब भागवत खुद पढ़ेंगे तो कभी ये सब ध्यान नहीं देंगे कि हर मनवंतर में ये जो होता है ये संपूर्ण सृष्टि की रचना का वर्णन है। अब आपको मालूम है मोदी जी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर जेटली हैं, है ना, डिफेंस मिनिस्टर फलाना है, ये मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट। वैसे ही सृष्टि की रचना में जो प्रधानमंत्री है उनको बोलते हैं मनु, और उनका जो कैबिनेट है वो ये है और कुछ नहीं, समझ रहे ना। तो मनु, अब हर पांच साल में यहां इलेक्शन होता है कि नहीं, यहां हजारों वर्षों में एक बार बदलता है सत्ता, वो भी इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि होगा कौन, सबसे पहले वही प्रकट होते हैं, फिर बाकी सब प्रजा को वही तैयार करते हैं। तो मनु जब स्वयंभू हैं तो उनके मनुपुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, फिर जो देवता उनको असिस्ट करते हैं वो याम, फिर सुरेश्वर अर्थात उन देवताओं को संभालने के लिए, देवता मतलब ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो उनका भी एक चीफ सेक्रेटरी चाहिए, तो वो है इंद्र उसका नाम, तो सुरेश्वर मतलब जो उनको संभालेगा, रिपोर्टिंग अथॉरिटी फॉर ऑल डेमिगॉड्स, उसका नाम इंद्र है। तो इंद्र कोई पोस्ट का नाम है और वो व्यक्तियों का नाम बदलता है, तो इंद्र मतलब प्राइम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी मींस इंद्र, लेकिन उसका नाम होगा कुछ। तो स्वयंभू मनु के समय जो इंद्र थे उसका नाम था यज्ञ, अब स्वरोचिषा मनु के समय था रोचना, उत्तम मनु के समय था सत्यजीत, तामस मनु के समय था त्रिशिख। ये बेचारे नाम कभी फेमस हुए ही नहीं, केवल पोस्ट से वो फेमस रह गया। और होता भी है कई बार, किसी बिजनेसमैन को पूछो चीफ सेक्रेटरी है उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो कितना खिलाने वो मालूम है, चाहे ये हो वो हो हमको तो काम से मतलब है। तो हम लोग इतने काम से मतलब रखते हैं कि बेचारे इंद्र का नाम भी नहीं जानते, केवल इंद्र इंद्र बोल के पटा देते हैं हम लोग। अच्छा, फिर उसके बाद उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी, उनको भी काउंसलिंग करने के लिए कोई चाहिए, तो वो है ऋषि। तो उसमें से चीफ कौन होता है, स्वयंभू मनु के समय मरीचि, स्तंभ, और फिर उत्तम के समय प्रमद, ऐसे। और फिर हर बार बीच में भगवान भी देखने के लिए आते हैं कि मैटर सब ठीक चल रहा है कि नहीं, है कि नहीं, सब बजट के अनुसार चल रहा है क्या, सब ठीक ठाक चल रहा है क्या, कुछ व्यवस्था है क्या, तो वो उसको कहते हैं अंशावतार। तो उस समय स्वयंभू मनु के समय कपिल देव आए, यज्ञ आए, स्वरोचिषा के समय विभु आए, उत्तम के समय सत्यसेन आए, और तामस मनु के समय हरि आए, और हरि ने क्या किया, वो गजेंद्र को बचाया। जो गजेंद्र को बचाया, हम लोग कहते हैं विष्णु ने बचा लिया, भगवान ने बचा, लेकिन वो एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर भगवान जो आए, उनका नाम था हरि। तो वैसे ही भगवान जब कपिल देव के रूप में आए, उन्होंने क्या कार्य किया, प्रचार कार्य किया, फिर 88,000 विभु ने उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया, सत्यसेन ने अलग अलग राक्षसों का वध किया। तो हर एक जो मनवंतर में ये सारे कार्य एक साथ चलते हैं, ये 8th कैंटो का विषय है। तो 8th कैंटो इज लाइक यू नो पॉलिटिकल मैगजीन विच इज गिविंग यू पिछले 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में अलग अलग गवर्नमेंट में कैबिनेट में क्या क्या हुआ और गवर्नमेंट के मेन मेन एक्टिविटी क्या थी, वो 8th कैंटो में एक झलक दे दिया कि ब्रह्मांड के इतिहास में कई बार जब सत्ताएं आई तब सत्तारूढ़ी दल में से भगवान ने क्या क्या कार्य किए, वो 8th कैंटो है। ठीक है, तो अब गजेंद्र जी का हम लोग वर्णन पढ़ेंगे। तो उसमें गजेंद्र जी को उन्होंने बचाया, तो गजेंद्र जी एक हाथी थे और बड़े शक्तिशाली, अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो जा रहे थे और एक जलाशय में प्रवेश करके वो स्नान किए और दूसरों को स्नान कराए, तब अचानक उनके पैर को किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे कि उनके पैर के चाप को सुन के सारे जंगल के प्राणी भाग जाते थे। तो सत्ता और शक्ति के वो इतने आदि थे कि उन्होंने कल्पना नहीं की कि ये जो राक्षस है, जानवर है और मगरमच्छ है, वो मुझे कुछ क्षति पहुंचा पाए। उनके मन में संशय था नहीं, तो पहले तो यूं यूं प्रयास किया कि चलो इसको झटका दें, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं। तो युद्ध आरंभ हो गया, संघर्ष आरंभ हो गया। पहले तो दूसरों की सहायता नहीं लिए, फिर देखा कि मैं नहीं बच पा रहा हूं तो पारिवारिक सदस्यों का सहायता लेने लगे। जब परिवार के लोग देखे कि हम क्या करें, वो सब नदी के तट पर खड़े होकर वो भी रो रहे थे। तब हजार वर्षों तक ये युद्ध चला। और इस युद्ध की विशेषता क्या थी कि ये मगरमच्छ अपने शक्ति के स्थान में थे और गजेंद्र जी जो कि स्थल के प्राणी हैं, वो जल में अपने वास्तविक स्थिति से अलग। तो मगरमच्छ के लिए परिस्थिति स्वाभाविक थी और गजेंद्र जी के लिए कृत्रिम, और इसलिए वो फंस गए। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने इंद्रियों को पूर्ण रूपेण विकसित करके भगवान की सेवा में नियोजित करने उचित आश्रम में रहना आवश्यक है। तो जो भी हम आश्रम ग्रहण करते हैं, वो आश्रम निर्धारित करेगा कि हमारी इंद्रियों को शक्ति प्राप्त हो रही है कि हमारी इंद्रियां क्षीण हो रही हैं। तो इसलिए जब बहुत समय तक ये चलता रहा तो जल में उसकी शक्ति बढ़ रही थी और गजेंद्र जी के जल में शक्ति क्षीण हो रही थी। तब वो ऊपर निस्सहाय भाव में प्रार्थना करने लगे। नमाम इमे ज्ञाते आतुरम गजा कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पाशेण विभातुर आवतो प्यहम चतम यामि परम्परायणम। भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नमाम इमे ज्ञाते आतुरम गज, मेरे इस आतुरता को देखकर मेरे सभी संबंधी, समीप परिवार के सदस्य, पत्नियां इत्यादि स्वजन कुछ नहीं कर पा रहे। मृत्यु शैया पर निस्सहाय भाव से लेटकर जब व्यक्ति कोमा में जाए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते। नमाम इमे ज्ञातय आतुरम गजा कुतः करिण्य प्रभवंति मोचितुम ग्राहेण पाशेन इवातुरावृतो। इस ग्राह के रूप में वास्तव में काल शक्ति ने मुझे ग्रसित कर लिया, इसलिए अब मैं केवल उन भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता हूं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपना सूंड उठाकर भगवान से प्रार्थना करना आरंभ किया। तो प्रश्न उठता है कि गजेंद्र जी इस प्रकार कैसे कर पाए। तो अगले श्लोक में वर्णन आता है, एवं व्यवस्था बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक जन्म अनुशिक्षितम्। पिछले जीवन में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको याद करके, स्मरण करके अब वो मंत्र बोलने लगे और दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संका मुने सुसाधवा चरन्ति लोकाप्यमब्रणम वने भूतात्म भूत सूरदश्च मे गति। प्रहलाद महाराज गजेंद्र जी कहते हैं, प्रभो सनातन काल से बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, मनीषीगण वन के भीतर भगवान को, परम सत्य को खोजते हुए प्रवेश किए हैं, लेकिन आपके चरण कमलों को प्राप्त करना केवल तपस्याओं के परिणाम से संभव नहीं। आप जब तक कृपा नहीं करोगे आपको कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार वो कहते हैं, कि भगवान इतने कृपालु हैं, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। भगवान करुणामय हैं, शरणागत वत्सल हैं, भक्त के हृदय की भावना को जानकर अति शक्तिशाली भगवत तत्व को प्रकाशित करते समय हर जीव का उद्धार कर सकते हैं। मुक्ताय भूरि करुणाय, आप करुणा के सागर हो, नमो अललाय। लेकिन साथ साथ चाहे कोई जीव कितना भी आपका विरोध क्यों न करे, आपके मन में ऐसे जीव के प्रति निरंतर क्षमा की भावना उमड़ती रहती है, आप ऐसे भक्त का उद्धार करके ही छोड़ते हो। अगर कोई किसी को दवा दे और वो दवा की बोतली उठाकर सीधा हमारे मुंह पे दे मारे, तो वापस हम दवा देंगे क्या? लेकिन भगवान कितने ही करोड़ों जन्मों से हमको प्रस्ताव देते आ रहे हैं, मेरी ओर आ जाओ, मेरे साथ संबंध स्थापित करो, लेकिन जीव निरंतर भगवान का विरोध कर रहा है। लेकिन भगवान कभी फ्रस्ट्रेट होकर अपने प्रयास को विफल नहीं करते। इसको कहते हैं नमो अललाय। अललाय मीन्स जो कभी न थके। स्वामशेन सर्वथनुवृत मनसी प्रतीक प्रत्येक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। तो कहते हैं कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं, वो जानते हैं हमारे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठतम भले और शुभ कार्य क्या है, और ऐसा हस्तक्षेप हमारे जीवन में करके ही छोड़ेंगे। स्वामशेन सर्वतनुवृत मनसि प्रत्येक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। तो इस प्रकार वो भगवान को पूर्णतः शरणागत हो जाते हैं, और तब भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। और भगवान प्रकट होते होने पर देखिए गजेंद्र जी कैसे अपने सुंड से भगवान को एक पुष्प समर्पित कर रहे हैं, और भगवान आकर अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के गले को काट डालते हैं, समाप्त कर देते हैं, और गजेंद्र जी मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न उठता है, गजेंद्र जी अपने पूर्व जीवन में क्या थे? तो वर्णन आया है कि गजेंद्र जी अपने पूर्व जीवन में वास्तव में एक इंद्रद्युम्न महाराज नाम के राजा थे, और ये इंद्रद्युम्न महाराज राजा अपने जीवन पर्यंत साम्राज्य संभालने के पश्चात सेवानिवृत्त होकर कुलाचल नाम के पर्वत पर एकांत स्थान में घनघोर वन के बीचों बीच किसी भी प्रकार के मानव सभ्यता से बहुत दूर एकांत में बैठे थे। अब मैं अगर प्रश्न पूछूं कि घनघोर वन के बीचों बीच पर्वतीय चट्टानों के ऊपर मानव सभ्यता से दूर कोई अकेला बैठा रहे, तो किसी के साथ झगड़ा हो सकता है? लौकिक तर्क का प्रयोग करो तो उत्तर होगा नहीं हो सकता। झगड़ा कैसे होगा, कलह कैसे होगा? कलह के लिए दो व्यक्ति चाहिए, केवल वो हैं डीटीज हैं, डीटीज के साथ थोड़ी झगड़ा करेंगे। लेकिन भगवान ने अगर निश्चय किया है कि आज आपको लटकाना है, तो दुनिया के किसी भी कोने में आकर कोई भी आपको लटका देगा। तो भगवान की इच्छा के अनुसार सौभाग्य और दुर्भाग्य निर्धारित होता है। तो ये बेचारे चुपचाप बैठकर अपना भजन कर रहे हैं, भगवान के सुंदर विग्रह की पूजा में लगे हुए हैं। कोई पाप कार्य किया नहीं, निष्कलंक निश्चल निर्मल चरित्र के साथ निष्पाप हृदय से वो सेवा में लगे हैं। हम कहते हैं डू गुड बी गुड यू विल गेट गुड, ही वॉज ऑल गुड। लेकिन वहां बिना निमंत्रण के पहुंच गए अगस्त्य ऋषि। इंद्रद्युम्न महाराज ने बुलाया नहीं, मैंने बुलाया नहीं, आपने बुलाया नहीं, किसने बुलाया? यदृच्छया। यदृच्छया अर्थात दैववश पहुंच गए। और न केवल अगस्त्य ऋषि गए, साथ में कई कई शिष्यों को लेके गए। अब क्यों गए, जिससे कि हम गजेंद्र कथा सुना सके, इसके सिवा और क्या उत्तर है? वहां गए, और जैसे गए न केवल गए, वहां जाकर ये सोच सकते थे अरे कितने तल्लीनता के साथ डीटी वर्शिप कर रहे हैं ये, ओहो हो ऐसी भक्ति हमारे अंदर भी आ जाए, ऐसा सोच सकते थे। लेकिन अगस्त ऋषि देखे इंद्रदुम्न महाराज आरती किए जा रहे हैं, बोले अरे इतने बड़े ऋषि आपके द्वार पर आए हैं और उनका स्वागत नहीं, घोर अपमान, आप एक हाथी की तरह बैठे हो, स्तंभ अभिश्राप। तो इसलिए यहां वर्णन किया गया है, स एकदा आराधन कालम आत्मवान गृहीत मौन व्रतम ईश्वरम हरि। तो इस श्लोक में उनके सद्गुणों का वर्णन है, क्या क्या था इंद्रदुम्न महाराज के अंदर, वैराग्य, तपस, तपस्या, आप्लुत, दिव्य आनंद, अच्युत परफेक्ट वर्शिप, समर्चना मेथड ऑफ वर्शिप, मौन व्रत सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम। अब इससे अधिक आपको और दिव्य गुण क्या चाहिए? हर प्रकार के सर्वगुण संपन्न होने पर भी अगर दुर्भाग्य की घटना घटनी हो तो बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी आपको चेतावनी देकर नहीं बचा सकता, ये लिख के ले लो। और यहां पर वही बताया है। अब अगस्त ऋषि का दृष्टिकोण अगले श्लोक में आता है, तस्मात इमं शापम अदात असाधुर एवं दुरात्मा कृत बुद्धि अद्य विप्रावमंतम विशिताम तमिश्रम यथा गजस्तब्धमति सैव। तो अगस्त ऋषि क्या देख रहे हैं, असाधु, ये इंद्रदुम्न महाराज जेंटलमैन नहीं है, असाधु है, दुरात्मा, अरे डिग्रेडेड है, पतित आदमी है, अकृत, अशिक्षित है, शास्त्रों के अनुसार शिष्टाचार नहीं जानता, अवमंता, ऑफेंसिव। अब देखो भगवान का कोई आरती कर रहा है, आप मंदिर में जाओ तो पुजारी का ध्यान कहां रहेगा, भगवान के ऊपर रहेगा। अब भगवान में मग्न व्यक्ति आरती कर रहा है, उसको देखकर ये कह रहे अवमंता, कितने बड़े अपराधी हैं देखो। तो इसलिए इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना योजना बनाए, बिना इच्छा किए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवत भक्ति का कार्य करते हुए भी हम लड़खड़ा के कभी भी गिर सकते हैं। कौन वैष्णव हमारे विषय में किस प्रकार की धारणा कब अपने मन में रखे, इसके विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इसलिए अच्छे से अच्छे सेवा करने पर भी बुरी से बुरी गाली सुनने के लिए तैयार हो कि नहीं, ये प्रश्न पूछा है। तो इसलिए यहां पर कोई ये बात नहीं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कर सकते हो, नहीं, हो गया। अगस्त ऋषि ने जब श्राप दिया उसको एनालिसिस करने के लिए कोई इंटरनेट के साइट्स नहीं चल रहे थे, उस समय कोई फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था जिसपे चर्चा हो सके। अगस्त ऋषि श्राप दे के निकल गए, और होता भी तो अगस्त ऋषि सारे फेसबुक को श्राप दे के बिठा देते, उनके अंदर इतनी ताकत थी सारे अकाउंट को बंद कर दे। एवं शब्दवा गत अगस्त्यो भगवान रूपसानुगा इंद्रदुम्न पि राजर्षि दिष्टम तत् उपधारयन् आपन्न कौञ्जरीम् युनिम् आत्मस्मृतिम् विनाशिनीम्। तो अब इस श्लोक में वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं अगले श्लोक में, अच्छा इंद्रदुम्न महाराज ने गलती की नहीं, भगवत भजन में लगे थे, हां, जो पूर्णतः शुद्ध हृदय से भगवत भजन में लगे और उसके प्रति कोई अपराध करे और उसको अपराधी बोले तो उस वैष्णव भक्त की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए या सहन करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए कि चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए, यह प्रश्न उठा है। तो अभी जो क्षत्रिय प्रवृत्ति के होंगे बोले अरे मारो पकड़ के, छोड़ो मत, ऐसे कैसे सहन कर सकते हैं। लेकिन अब यहां वर्णन आ रहा है, क्योंकि भागवत है ये, भागवत अर्थात आपको किसके ऊपर विजय पाना है, शत्रु पे नहीं, मन पे, मन पे विजय दिलाने वाला शास्त्र है भागवत, शत्रु पर विजय प्राप्त दिलाने वाला शास्त्र है महाभारत, ये मन है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि गजेंद्र जी अपने इंद्रद्युम्न महाराज उस समय क्या किए, उनकी प्रतिक्रिया के 10 पॉइंट प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं। दैट व्हेन यू फेस रिवर्सल्स यू शुड फॉलो दीज 10 थिंग्स। पहला, जैसे उनको ये अभिश्राप प्राप्त हुआ, एवं शप्त्वा गत अगस्त्यो भगवान रूप सानुगा इंद्रद्युम्नो पे राजर्षि दिष्टम तत् उपधारयन्। सबसे पहले इंद्रद्युम्न महाराज ने एनालाइज क्या किया, 5 प्रकार से एनालाइज किया। ये जो श्राप मिला, दिस कर्स वॉज डिजायर ऑफ द लॉर्ड, फर्स्ट पॉइंट। व्हेन समवन इज कर्सिंग मी, समवन इज क्रिटिसाइजिंग मी, ऑल्दो आई एम डूइंग गुड, आई शुड कंसिडर इट टू बी लॉर्ड्स डिजायर, नंबर 1। नंबर 2, नॉट जस्ट डिजायर, आई शुड सी इट एज लॉर्ड्स ब्लेसिंग्स, भगवान का आशीर्वाद। ये सब प्रभुपाद के परपोर्ट में है। तीसरा, आई शुड सी इट एज माई मिस्टेक, मैंने कुछ गलती की होगी इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जिसका यह परिणाम है। फोर्थ, आई शुड सी दिस एज अ टोकन रिएक्शन फॉर माई पास्ट लाइव्स बैड कर्मास। ये केवल पिछले जन्म के किए हुए कर्म का एक फल है, छोटा सा टोकन रिएक्शन। पांचवा, आई शुड सी दिस फॉर माई प्यूरिफिकेशन, ये मेरे शुद्धिकरण के लिए है। दीज आर द 5 वेज इन विच वी शुड एनालाइज दैट सिचुएशन। डिजायर ऑफ द लॉर्ड, ब्लेसिंग्स, इट इज माई मिस्टेक, इट इज रिएक्शन आई एम गेटिंग, एंड इट इज फॉर माई प्यूरिफिकेशन। ये 5 एनालिसिस करने के बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इसमें प्रभुपाद 3 पॉइंट लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, सबसे पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए, आई विल कंटिन्यू सर्विंग दैट सेम लॉर्ड वाइल सर्विंग हुम आई गॉट कर्स्ड। क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज सेवा करते करते जब गाली खाए, उन्होंने ये नहीं सोचा भगवान को देख, अरे तुम्हारी आरती कर रहा था फिर भी गाली खाया, छोड़ो। तो सबसे पहले मन में आता है छोड़ो, नहीं, इनकी प्रतिक्रिया क्या थी, आई विल कंटिन्यू। दूसरी प्रतिक्रिया वो कहते हैं, आई विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, आई विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड अनएजिटेटेड। क्योंकि हमको लगता है ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, एजिटेट हो जाते हैं, कहते हैं अरे भगवान के दरबार में कुछ न्याय है कि नहीं। तीसरी प्रतिक्रिया वो कहते हैं, इस परिस्थिति में हम उस भगवान पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, निर्भर रहेंगे। क्योंकि अगर अभिश्राप से हमको भगवान नहीं बचा पाए, तो हमको भगवान की शक्ति पे प्रश्न चिन्ह उड़ जाता है, अरे इज इट वर्थ डिपेंडिंग ऑन हिम, बिकॉज यू नेवर नो, डजंट सीम टू हैव पावर, इफ ही हैज पावर हाउ ही विल अलाउ दिस। सो देयरफॉर दीज आर द 3 रेस्पॉन्सेस, आई विल कंसिस्टेंटली कंटिन्यू टू सर्व, आई विल रिमेन अनएजिटेटेड अनडिस्टर्ब्ड, एंड आई विल रिमेन डिपेंडेंट। और तत्पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये रेस्पॉन्स के पश्चात उनके एक्सपेक्टेशन क्या थी, वॉट शुड बी अवर 2 एक्सपेक्टेशंस। द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इज वी हैव फेथ दैट कृष्णा विल टेक केयर, एंड सेकेंड एक्सपेक्टेशन इज वी हैव फेथ दैट कृष्णा विल प्रमोट मी टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हैव दीज 2 एक्सपेक्टेशंस एट द एंड, कृष्णा विल टेक केयर, कृष्णा विल प्रमोट मी टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस तरह से एनालिसिस के 5 पॉइंट, रेस्पॉन्स के 3 पॉइंट, एक्सपेक्टेशन के 2 पॉइंट प्रभुपाद जी पूरा एक परपोर्ट में सुंदर तरीके से लिख दिए, हाउ टू फेस रिवर्सल्स ऑन 10 पॉइंट्स। सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, व्हाई यू शुड डू दिस, क्यों करें, इसका लाभ क्या मिला सहन करने का? बिकॉज अगर आपको कोई बोले सहन करो तो आप बोले अरे क्या मिलने वाला है सहन करके। तो यहां कहा है दिष्टम तत् उपधारियन, सहन किया आपन्न कौंजरिम योनिम, जब उस इंद्रदुम्न महाराज को भविष्य में चलकर हाथी का जन्म मिला। वो हाथी का जन्म कैसा है? आत्मस्मृतिम विनाशिनीम, आत्मा की स्मृति को नष्ट करने वाली योनि है हाथी की योनि। लेकिन हरि अर्चनानुभावेन यत गजत्वे अपि अनुस्मृति, गजत्वे अपि, हाथी के जन्म में भी वो भगवान को स्मरण कर पाए दो कारणों से, दिष्टम तद उपधारयन और हरि अर्चनानुभावेन। He was consistent in his seva and he was considerate towards the sevaks. So consistency in seva and considerate dealings with the sevaks pleases the Lord. When the Lord is pleased, he allows you to remember him. क्योंकि भगवान को स्मरण करना हमारे कर्मानुसार बुद्धि के ऊपर नहीं निर्भर करता, वो वैष्णवों के संतोष पर निर्भर करता है। तो इसलिए गजेंद्र भगवान को याद कर पाए, आत्मस्मृतिम विनाशिनीम। उस समय श्राप खाए, श्राप खाते समय वो समझ नहीं पाए कि आगे क्या लाभ मिलेगा, लेकिन सहन किया और प्रतिकार नहीं किया। और क्योंकि पहले ही सेवा ठीक कर रहे थे, सेवा के साथ साथ जब सहिष्णुता का भी उन्होंने वर्णन दिया, तो इस प्रकार निरंतर सेवा भाव और वैष्णव संग में सहिष्णुता का प्रदर्शन करके, ये सेवा और सहिष्णुता के समन्वय से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए हमको समझना है कि हम वैष्णव सत्संग में क्यों आए हैं, वैष्णवों को हराने, वैष्णवों को गलत सिद्ध करने, वैष्णवों के प्रति प्रतिकार निकालने। हम लोग यहां पर किस लिए आए हैं? कृष्ण का स्मरण कैसे करें? पहले ही दिन बताया था ना, प्रॉफिट। हम लोग यहां पर बिजनेस सर्कल में आए हैं प्रॉफिट कमाने। क्या प्रॉफिट क्या है? कृष्ण स्मरणम। दिन के 24 घंटे में जितने हम लोग समय स्मरण कर पाते हैं उतना दिन का प्रॉफिट बैलेंस है। दिन के जितने घंटे हम कृष्ण को भूल जाते हैं वो लॉस है। वैसे जीवन भर का निकालो तो जितना अधिक हम कृष्ण का स्मरण कर पाए वो जीवन की सफलता है, और वो सफलता दिखेगी मृत्यु के समय। तो इसलिए अगर हमको कृष्ण का स्मरण करना हो तो इंद्रदुम्न महाराज के उदाहरण को अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए गजेंद्र के जो श्लोक हैं, वो श्लोक तो अपने आप में शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है, लेकिन उस श्लोक को पढ़कर हमको याद करना है कि हाथी की योनि प्राप्त करके कोई भगवान को कैसे स्मरण कर पाया, क्योंकि अपने उसने पिछले जन्म में सटीक सेवा की और सहिष्णुता के साथ सेवकों के साथ व्यवहार किया। तो इसलिए सेवा और सेवक दोनों पे दृष्टि होनी चाहिए। अगर केवल सेवा के ऊपर ध्यान गया और सेवकों को हम विदीर्ण करते चले गए, स्मरण नहीं कर पाएंगे। केवल सेवकों के साथ घूमते रहे और सेवा को छोड़ दिया तो भी नहीं चलेगा। तो सेवा और सेवक दोनों की पटरी पर अपने को चलना है, तब जाकर कृष्ण का स्मरण हम कर पाएंगे। ये गजेंद्र जी के इस कथा से हम लोग समझ पाते हैं। और ये आपको मैं केवल उदाहरण दे रहा था ये 10 पॉइंट का, कि एक एक परपोट प्रभुपाद का कितना शक्तिशाली है। एक एक तात्पर्य को आप देखोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, भक्ति में आपका दृष्टिकोण, आपका रवैया बदल जाएगा। ये सब सीखने के लिए हम लोग इस्कॉन में आए हैं। सो इस्कॉन एग्जिस्ट्स इन these literatures of Prabhupada, ISKCON exists in these devotional practices. और इसलिए जितना भक्त लोग आपस में आकर इसको केंद्र बनाकर चलेंगे उतना भक्ति में प्रगति करेंगे. आगे वर्णन आता है दुर्वासा मुनि के कथा का कि एक दिन दुर्वासा मुनि रास्ते पर जा रहे थे, इंद्रदेव हाथी के ऊपर बैठकर चले और दुर्वासा मुनि ने अपना वरमाला इंद्रदेव को दिया. इंद्रदेव ने उस माला को लेकर ऐरावत को दे दिया. अब ऐरावत केला को समझता है, माला थोड़ी समझता है. माला को लेके उठा के जमीन पे पटका और कुचल डाला सीधा दुर्वासा मुनि के सामने. अब बाद में करता वो भी अलग बात थी, सीधा दुर्वासा मुनि के सामने ही पटक के बोला ये है तेरा महाप्रसाद देखो. तो दुर्वासा मुनि ने तत्क्षण वहीं पर श्रापित कर दिया और उस अभिश्राप के कारण सारे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई. तब सारे भगवान के पास आए. भगवान ने कहा कि चलिए मंथन कीजिए समुद्र का. तो समुद्र के मंथन की तैयारी करने लगे और समुद्र के मंथन के लिए भगवान ने कहा सबसे पहले मंदार पर्वत को लेके आओ. मंदार पर्वत को लेके आए, उठा नहीं पा रहे थे, सबके हड्डी पसली टूट गए. भगवान स्वयं उसको उठाए लेके आए, कूर्मा अवतार के रूप में प्रकट हो गए. कूर्मातार के पीठ पर उनको रख दिया और फिर भगवान अपने गरुड़देव को बोलते हैं यहां से चले जाओ. गरुड़ हमेशा भगवान के साथ रहते. उस दिन भगवान ने कहा तुम चले जाओ. क्यों? क्योंकि वासुकी सर्प को बुलाना था. वासुकी को देखकर गरुड़ बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे, तो बोले दोनों का नहीं चलेगा. तो कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट को समर्थ करने के लिए दो लोगों को अलग रखना ही ठीक है. दो लोग साथ में रहेंगे तो मंथन दूसरा होगा, विष निकलेगा. तो इसलिए उन्होंने कह दिया दूर चले जाओ. जैसे ही वासुकी आ गए बांध दिया, देवता सर पकड़ लिए और असुरों को बोल दिया पूंछ पकड़ लो. असुर कहने लगे अहेर पुच्छम अमंगलम, अरे हमको पूंछ दे दिया, पूंछ तो अमंगल है, हम लोग को तो हेड बनने का आदत है, टेल थोड़ी बनेंगे. तो भगवान ने कहा ठीक है आ जाओ पकड़ो, मुख का भाग पकड़ लो. और जैसे मुख का भाग पकड़े और चालू हुआ, वासुकी के पेट से जो सारा विषैला धुआं था निकला, सीधा असुरों के सर पे मारा. भगवान ने पूछा कैसा लगा. तो भगवान जब बोलते हैं उनका विरोध करने का ही एकमात्र काम है. मंथन करते रहे, मंथन करने के परिणाम स्वरूप निकले अंदर से हलाहल विष. जैसे ही विष बाहर आए, भगवान तुरंत बोले ये अपना डिपार्टमेंट नहीं है. विष का डिपार्टमेंट किसका है? शिवजी के पास. शिवजी के पास गए, शिवजी को बोला, सारे देवता जाके बोलने लगे प्रभो इतना विष का सागर उमड़ पड़ा है, कृपा करके आप थोड़ा पी लेंगे क्या उसको? सोचिए प्रस्ताव भी कैसा निर्लज है. ऐसा नहीं कि घर पर छप्पन भोग के लिए बुला रहे. कभी शिवजी को बाकी फिस्ट के लिए बुलाए नहीं, विष पीने के लिए निमंत्रण दे रहे. शिवजी भी बड़े चतुर हैं, बोलते हैं हाँ पी तो लूंगा, पहले पत्नी को पूछना पड़ेगा. तो आदर्श गृहस्थ का चरित्र दिखाते हुए कह रहे हैं. तो पार्वती जी को पूछते हैं ये विष का सागर है पी लूं क्या? पार्वती जी कहती है हाँ आप तो कुछ भी पी सकते हो. तो तुरंत अपने शक्ति के प्रभाव से विष के सागर को वो केवल एक मुट्ठी भर का कर पी जाते हैं. और जब उस मुट्ठी भर विष को पी जाते हैं तब वो जो विष है उनके गले में आकर अटक जाता है. क्योंकि विष को वो ना अंदर पचा सकते हैं ना वो बाहर फेंक सकते हैं. बाहर फेंकेंगे तो देवता मरेंगे, अंदर जाएगा तो पता नहीं उनका क्या होगा. इसलिए वो यहां कंठ में अटका लिए. तो इसलिए सेवा करते करते कभी कोई गाली दे दे तो ना उसको हम लोग बहुत अंदर लेकर सेवा में हतोत्साहित हो सकते हैं, ना गाली वापस दे सकते हैं. तो इसलिए कोई गाली दे तो सीधा कंठ में पकड़ के नीलकंठ बन के घूमना पड़ता है. तो इसलिए यहां पर यह वर्णन आया है तप्यन्ते लोकतापेन साधवो प्रायशो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मन. तप्यन्ते लोकतापेन, कि इस जगत के लोग हर प्रकार के त्रिविध ताप से परेशान हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए भगवान और भगवान के भक्त स्वयं कष्ट भुगतते हैं और दूसरों के कष्टों को दूर करते हैं। आगे अलग अलग रूप से वर्णन किया गया है कि भगवान ने कैसे इनको संरक्षण दिया। भगवान ने ये 12 प्रकार से इन्वॉल्व हुए, उन्होंने इच्छा की, आदेश दिया कैसे मंथन करना है, देवता और असुरों के टूटे फूटे अंगों को सुष्ठु किया, मंदार को उठाया, गरुड़ को भेज दिया, असुरों को उनका सर पकड़ा दिया, वासुकी का कूर्मदेव के रूप में प्रकट हुए, फिर देवता असुर और वासुकी को 3 गुणों के माध्यम से वो प्रविष्ट किए, अजित के रूप में वो उस पर्वत के ऊपर आकर बैठ गए और फिर अलग अलग वर्षा के रूप में वो प्रकट हुए और फिर अजित देवताओं की ओर आकर फिर खींचने लगे, देवताओं का हाथ बटाने लगे और तत्पश्चात शिवजी को पूरा क्रेडिट वो दे रहे थे। इसलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा सौंदर्य है दूसरों को श्रेय देना और ये भगवान का एक अपना गुण है। अब तब सारे ऐरावत ऐरावण बाकी सारे वस्तु बाहर प्रकट हुए, तत्पश्चात अंदर से लक्ष्मी देवी हाथ में वरमाला लेके आई। लक्ष्मी देवी बाहर आने के पश्चात एक एक असुर को, देवता को, ऋषि मुनि को देख रही थी, विश्लेषण कर रही थी कि सर्वगुण संपन्न कौन है। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, ज्ञानम क्वचित यच्च न ताग निर्जय, स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रय। तो बड़ा सुंदर 3 श्लोकों में लक्ष्मी देवी का विश्लेषण है। अगर कोई आदर्श स्वामी को आप अपने जीवन में ढूंढोगे, आदर्श संबंध ढूंढने जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि इस जगत में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, नो बडी इज परफेक्ट। तो देख रही थी नूनम तपो, एक को देख के बोलती, अरे ये तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, इनको पति के रूप में ले लें क्या। मन्यु निर्जयो, लेकिन क्रोध भी बड़ा भयंकर वॉल्केनो की तरह है, नहीं भैया इनसे नहीं। हाँ, ज्ञानम क्वचित तत्चन संग वर्जितम, ये देखिए इनसे विवाह करें क्या, बड़े ज्ञानी हैं ये, लेकिन संग वर्जितम, बहुत अटैच्ड है, भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा है। ऐसा करके एक एक के गुण देखा, दुर्गुण देखा, गुण देखा, दुर्गुण देखा। 33 कोटि देवता और कोटि कोटि असुरों के बीच उनको एक व्यक्ति नहीं मिला जो परफेक्ट रिलेशनशिप के योग्य है, परिपूर्ण संबंध के योग्य एक व्यक्ति नहीं मिला। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से लक्ष्मी देवी हमको ज्ञान दे रही है कि इस जगत में मनुष्यों के अंदर आप परिपूर्णता की अपेक्षा मत करो और फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ। जिसके साथ भी संबंध स्थापित करोगे, इस बात को अपेक्षा करो कि उनके अंदर कई कई कमियां होंगी, ये जगत का नियम है। तो इसलिए स्वामी के अंदर, पति पत्नी के अंदर, पुत्र के अंदर, पिता के अंदर, माता के अंदर, मित्र के अंदर, सुहृद के अंदर, चाहे जितने भी वर्ग के श्रेणी के संबंध इस जगत में होंगे, वो हर प्रकार के अपूर्ण तत्वों से, कमियों से पूरी तरह सिक्त होंगे। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको परफेक्ट रिलेशन मिलेगा। तो इसलिए परफेक्ट रिलेशन किसके साथ संभव है, वहां निकलते हैं नारायण भगवान और लक्ष्मी देवी जाकर वरमाला उनको पहना देती है और तत्पश्चात फिर लक्ष्मी देवी का अभिषेक, स्वयंवर इत्यादि होता है और फिर अंदर से वारुणी का हाथ अपने लेकर ओ धन्वंतरी निकलते हैं अमृत को लेकर। जैसे निकलते हैं सारे सुर असुर लड़ने लगते हैं और जैसे निकलते हैं सारा भूल गए, अपना इतना समय का कसरत एग्रीमेंट सब भूल कर उठा के खींच लेते हैं। असुर लोग अपने हाथ में ले लेते हैं और असुर लोग हाथ में ले लिए, सबसे शक्तिशाली असुर उसको खींच लेते हैं, तो कमजोर असुर सब कहने लगते हैं नहीं नहीं अन्याय है, देवताओं को ही बांटना चाहिए, क्यों, क्योंकि उनको नहीं मिला। उस समय देवता सोचते हैं इतना दीर्घकालीन प्रयत्न हमारा विफल होने वाला है, अब क्या करेंगे। तब अचानक देखते हैं सर्वांग सुंदरी, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का एक रूप मोहिनी मूर्ति का प्रकट हो जाता है। उसको देखकर, मोहिनी मूर्ति के रूप को देखकर असुर लोग सोचते हैं कि हम लोग कौन से अमृत के पीछे पागल है, ये तो चलता हुआ अमृत है। हाँ, हम लोग मटके का अमृत को तो छोड़ो अभी। अब फिर मोहिनी मूर्ति उनको बड़ा मोहक शब्दों से मोहित करके बिठा देती है और कहती है कि देखो ये बच्चों की तरह रोएंगे, पहले उनको खिला देते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, तो जाती है वो, उनको बिठाते हैं और फिर बिठाते तो राहु को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, राहु आके बैठ जाता है वेश बदल कर। तो आके बैठ जाता है, मोहिनी मूर्ति प्रेम से पिलाते पिलाते आती है, राहु को देख के समझ जाती है अचानक इतने सुंदर रूप से विकराल सुदर्शन चक्र निकलकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तो आचार्य बताते हैं मोहिनी मूर्ति सब लोगों को सनातन काल तक इस अमृत का थोड़ा एडवर्टाइज करना चाहती थी, तो जब उसका सर कट गया तो तब तक उतना अमृत का स्पर्श हो गया था, वो अमर हो गया। तो इसलिए कहा गया है कभी किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना मत करना सोच के कि उस वस्तु को प्राप्त करके आपको सौभाग्य मिलेगा। अमृतम राहवे मृत्युर विषम शंकर भूषणम, अमृत पाकर राहु मरा और विष पाकर शिवजी अमर हो गए। तो इसलिए किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पद को प्राप्त करके आप महान नहीं हो गए, आपका सामर्थ्य आपकी ताकत आपकी औकात कितनी है वो इस बात को निर्धारित करेगा कि आपको सुयश मिलेगा या आप बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए यहां पर देवता और असुरों का युद्ध आगे दिया गया है। और फिर मोहिनी मूर्ति कैसे शिवजी को भ्रमित करती हैं और शिवजी अपने सभी भक्तों के सामने भ्रमित हो जाते हैं, इसका वर्णन आया है। फिर मन्वंतर में स्वतर ऋषि मुनि मनु मनुपुत्र इंद्र ये क्या करते हैं, अलग अलग जो मैंने बताया ना कैबिनेट के लोग, ये कैबिनेट के लोगों का फंक्शन क्या है बताया है, जो लोग अलग अलग करते क्या हैं। और तत्पश्चात बलि महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते हैं और उनसे शक्ति स्वीकार करने के लिए, उनको छल करने के लिए आ जाते हैं वामन देव। वामन देव आकर उनसे तीन पग भूमि मांगते हैं, शुक्राचार्य मना करते हैं लेकिन फिर भी वो कहते नहीं हम देंगे। बलिर एव गृहपतिर कुलाचार्य ने भाषित, हाँ तूष्णिम बभूव। वो सोचे यार ये कैसे, पहले तो इन्होंने कहा था कि विष्णु को देना चाहिए, अब कह रहे हैं नहीं देना। कहते नहीं, गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्याकारम अजानत उत्पत्त प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते, अगर गुरु कुछ बोले और उसका कार्य कुछ और हो तो उसको त्याग कर देना चाहिए। त्याग दिया उनको। तत्पश्चात उन्होंने तीन पग से, दो पग से पूरे जमीन धरती सब कुछ माप ली, आसमान को माप लिया, तीसरा पग कहां रखू पूछे, तब आत्मसमर्पण करते हुए बलि महाराज ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और तब वरुण पाश से उनको बांध लिया। सभी उनके ही आसुरी समाज के सामने उनका परिहास किया गया और तब वो स्वयं अपने हाथों से भगवान श्री वामनदेव के सामने आत्मसमर्पित हो गए और कहते हैं कि वास्तव में आपने मेरे साथ जो किया, पुंसाम श्लाघ्यतम मन्ये दंडम अर्हत मार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चा दिशंति ही, आपने हमारे साथ जो किया आज तक इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। तो फिर शुक्राचार्य देखकर बोलते हैं भगवान श्री विष्णु, वामनदेव जब ऐसा कार्य करते, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान आप ऐसा कैसे करते हो, आप तो कोई यत्पादियो अश्रति सरलम प्रदाय, कि कोई थोड़ा सा अगर जल प्रदान करे तो आप संतुष्ट हो जाते हो, इन्होंने तो ब्रह्मांड समर्पित कर दिया फिर भी उसको बंदी बना लिया, ये उचित नहीं है। तो ब्रह्मा जी एडवोकेट बन गए बलि महाराज के लिए। तब भगवान कहते हैं पांच कारणों से मैंने कार्य किया, सबसे पहला नास्तिकता को विनष्ट करने, जब कोई बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है उसको लगता है भगवान की सत्ता से मैं परे हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि बलि जैसा असीमित मात्रा में शक्ति रखने वाले व्यक्ति को भी मैं कभी भी कुचल सकता हूं। दूसरा, मानव जीवन का समय किसमें देना चाहिए? कभी कभी लोग पैसे कमाने में इतना समय देते हैं कि उनको लगता है भक्ति वक्ति फिजूल की बातें हैं, सत्संग में क्यों समय दें। तो भगवान कहते हैं मैं दिखाना चाहता हूं बलि महाराज जितना तुम लोग कमा सकते हो क्या? बलि महाराज ने इतना कमाया, दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति बना, एक झटके में कंगाल बना दिया। इसलिए समय समय पर सत्संग करते रहना, नहीं तो कब लात मारूंगा, खटिया खड़ी कर दूंगा, कोई भरोसा नहीं। तीसरा कहते हैं कि मैं दिखाना चाहता हूं कि नम्रता ही भक्ति का आधार है, कि जो व्यक्ति नम्र होगा वो नम्र भक्त के सामने मैं संतुष्ट होता हूं। तो बलि महाराज के मन में अहंकार आ गया कि मैं कितना कमाया हूं और मैंने कितना सत्ता प्राप्त किया है, मैं इतना बड़ा पूरे ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूं, तो उसको मैं नम्र करना चाहता था। तो सुदामा जी को भी भगवान नम्र किए। सुदामा जी को अहंकार हो गया अपनी गरीबी का, मैं कितना गरीब हूं, मुझसे गरीब कोई नहीं, आई एम द पुअरेस्ट। तो मिथ्या अहंकार भी अलग अलग फ्लेवर में आता है, तो गरीबी का भी अहंकार हो सकता है। तो भगवान ने कहा इसको अभी नम्र बनाना पड़ेगा, कैसे? करोड़पति बना के। तो सुदामा को करोड़पति बना के नम्र बनाया, और आप बोलो भगवान मुझे भी बनाओ ना वैसे ही, सुदामा टाइप हमको भी नम्र बनाओ, वो नहीं बनाएंगे, आपको जहां चाहिए वहीं बनाएंगे। चौथा कहते हैं मैं बलि महाराज के सहिष्णुता का गुणगान कराना चाहता था, कितने सहिष्णु है, हाउ टॉलरेंट ही इज। और पांचवा, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि भगवत भक्ति करके कभी किसी का लॉस नहीं होगा। मैं सुतल लोक में जाकर उनका दास बन गया और उनकी सेवा में लग गया। आगे इस तरह से ये पूरी कथा आती है बलि महाराज के आत्मसमर्पण का। तत्पश्चात मत्स्य अवतार का वर्णन आता है, किस प्रकार मत्स्य अवतार के रूप में वेदों को संरक्षण दिए। और फिर आठवें अध्याय के आठवें स्कंद के बाद अब नवें स्कंद में छोटी छोटी बहुत सारी लीलाएं हैं, हम लोग ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। तो इसमें वैवस्वत मनु का वर्णन आ रहा है। ब्रह्मा मरीचि कश्यप विवस्वान वैवस्वत मनु, फिर श्रद्धा का एक पुत्री हुई। तो वास्तव में क्या हुआ, वैवस्वत मनु या श्रद्धदेव मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा, तो ऋषि मुनियों से उन्होंने प्रार्थना की कि हमको पुत्र चाहिए, लेकिन पत्नी को पुत्री चाहिए थी, तो पत्नी ने गोपनीय रूप से पुत्री की कामना कर ली, फिर पुत्री हुई। तो वैवस्वत मुनि बहुत क्रोधित हो गए, अरे ये क्या, पुत्री का आशीर्वाद दिया, पुत्र का आशीर्वाद दिया था, पुत्री कहां से हो गई? तो बोले नहीं, आपकी पत्नी ने इस तरह से मांगा था, तो इसलिए वो पुत्री बन गई। लेकिन बाद में चलकर वशिष्ठ ऋषि के आशीर्वाद से वो पुत्र बन गए। फिर एक दिन वो जा रहे थे एक अंबिका वन में, और शिवजी पार्वती जी के साथ थी, तो पार्वती उनसे बहुत भड़क गई कि आप कैसे प्रवेश किए, उनको श्राप दे दिया कि आप पुत्री बन जाओ, स्त्री बन जाओ। तो फिर शिवजी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ करो। तो शिवजी ने वरदान दे दिया, ठीक है आप एक महीने पुरुष रहोगे, एक महीने स्त्री रहोगे, ऐसा उनको वरदान दिया। तो वो राज्य में बड़ी अद्भुत घटना घटी, उस राज्य को एक महीने राजा मिलता था, एक महीने रानी, वो जो बदलते थे। तो फिर आगे अलग अलग जो इनका वर्णन आ रहा है, फिर इक्ष्वाकु उनके पुत्र हुए, फिर नृग, हाँ, और सारियाति दिष्ट धृत, ऐसे अभी हम यहां पर चर्चा करेंगे। प्रश्रुध एक बार एक गाय के रक्षा करते करते उनको लगा ये गाय है, एक टाइगर है, शेर है, और गलती से उन्होंने बाण चलाया, वो लेकिन गाय था, तो वशिष्ठ ऋषि ने उनको अभिश्राप कर दिया और तत्पश्चात वो पालन करके भगवत भक्ति को प्राप्त किए। फिर एक शार्याती वायवस्पतों के एक और पुत्र का नाम है, और शार्याती का विवाह हुआ और तब उनकी एक पुत्री हुई सुकन्या। तो सुकन्या एक बार जाकर एक ढेले के ऊपर, मिट्टी के ढेले को देखकर उनको लगा यहाँ कुछ है और हाथ डाला, लेकिन वास्तव में एक ऋषि थे। ऋषि बाहर आकर भड़क गए तो गुस्सा हो जाएंगे ये सोचकर उन्होंने अपनी पुत्री को दे दिए, और फिर वो बहुत वयोवृद्ध थे लेकिन फिर भी वो विवाह संपन्न किया। तत्पश्चात बड़े प्रेम से उनकी सेवा की और उन्होंने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। अश्विनी कुमार ने उनके पति को फिर नवयौवन बना दिया और फिर उन्होंने उनको स्वीकार किया, और इस प्रकार उनका, उनके जो वंशज में एक थे रेवत, रेवत से आए काकुड़मी, काकुड़मी की पुत्री का नाम था रेवती, और वो रेवती बलराम जी से विवाह की। फिर शार्याती के वंशजों में आए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभग, और नाभग के जो आगे आए अम्बरीश महाराज, और अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि के बीच जो घटना घटी आप जानते ही हैं। दुर्वास मुनि ने केवल द्वादशी के व्रत को लेकर इतना बड़ा इश्यू बनाया है कि नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर कितने बड़े बड़े अभिशाप मिले हैं वो देख के अपने को समझना चाहिए। हम लोगों का छोटे मोटे लेवल पे हो जाता है, इतने बड़े लेवल पे नहीं जाता कभी। तो अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्ट मध्यमे कृतागसोपियन राजन मंगलानी समीह से। अंत में दुर्वासा मुनि सर्टिफिकेट देते हैं अम्बरीश महाराज को कि वास्तव में इस दुर्वासा अम्बरीश महाराज को देखकर मैं समझ सकता हूं ये वैष्णव है। क्यों? क्योंकि कर्मी योगी ज्ञानी हर प्रकार के आध्यात्मवादियों में वैष्णव ही एकमात्र श्रेणी है जिनके अंदर क्षमा करने की ताकत है। ये क्षमा करने की शक्ति और सामर्थ्य अन्य किसी आध्यात्मिक वर्ग के अंदर नहीं, तो इस प्रकार वो उनको क्षमा करते हैं। फिर मनु के छींक से निकलते हैं इक्ष्वाकु, छींकते हैं तो छींकने की आवाज, उनका नाम हो गया इक्ष्वाकु। उनके भी 100 पुत्र हुए, 25 पुत्रों को दे दिया पाश्चात्य पूर्व 25 को, और बाकी 3 जो थे विकुक्षी, निमि और दंडक, तो विकुक्षी का नाम हुआ ससाद, क्योंकि उन्होंने गलती से एक खरगोश को खा गए, तो खरगोश को खा गए तो उनको भगा दिया राज्य से वशिष्ठ ऋषि ने। तो नवे स्कंद में वशिष्ठ ऋषि बड़े एक्टिव हैं, कई कई जगह बीच बीच में प्रवेश करते रहते हैं। और फिर शशाद के 3 एक पुत्र थे, और उन पुत्र को इंद्र ने आके कहा तुम बड़े शक्तिशाली हो, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट पे आते हो क्या? तो इंद्रदेव पूरे ब्रह्मांड में ढूंढता रहता है कि कौन आके मिलेगा H1B वीजा में, किसको हम लेके आए, है कि नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग पुराना खेल है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो उनको जाके बुलाया तो उन्होंने कहा, ये भी कोई कम नहीं थे, तो इन्होंने कहा, तो इंद्र ने कहा कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए, व्हाट आर योर टर्म्स? तो कहते हैं इंद्र तुम अगर बैल बनोगे, आपके पीठ पे चढ़कर मैं युद्ध करूंगा, तब मैं फिर कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करूंगा। इंद्र वाले बाप रे, तो मुझे ही नम्र करने पे तुला हुआ है। तब वो बैल बन गए, इसलिए उनका नाम बन गया इंद्रवाह। और फिर काकुत्स्थ अर्थात वो बैल के ऊपर बैठे, और पुरंजय अर्थात असुरों को मारा। तो फिर पुरंजय के आगे अनेना पृथु विश्वगंधा चंद्र फलाना फलाना चलते चलते, ये देखिए आगे इतना बड़ा परिवार है, और ये सब सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े वैरागी सबका नाम याद रखे हाँ। आप परिवार के लोगों को परिवार के लोग याद नहीं रहते, सुखदेव गोस्वामी को न केवल वृंदावन में लोगों का नाम याद है, इन सब रैंडम लोगों का भी नाम याद है। लेकिन इनका नाम क्यों आया है, क्योंकि इन्हीं के वंश से जुड़े हुए कई महान महान वैष्णव भी प्रकट हुए। तो एक एक करके पूरा इनका डिटेल बता रहे हैं। अब तब फिर शौभरी ऋषि का उनकी कथा आती है कि शौभरी ऋषि जो प्रकट हुए, अब मछली को देखकर उनका मन भ्रमित हो गया। ये एक और अलग ही कथा है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि किचन में, कि यहां पर बैठे हैं सरोवर के अंदर और वो भ्रमित हो गए, बाहर निकले, मांधाता महाराज को बोले पुत्रियों के साथ विवाह करना है। मांधाता महाराज बोले अरे बाप रे, इनसे कौन विवाह करेगा। वो बोले मैं क्या बोल सकता हूं, मेरी पुत्रियां जो स्वीकार करे वो चॉइस वो करेंगी, शादी मुझे थोड़ी करनी है। उन्होंने बहुत चालाकी की, तो ये भी समझ गए शौभरी ऋषि ये मेरे कुरूपता को देखकर छल करने का प्रयास कर रहे हैं। तुरंत अपने योग शक्तियों से बड़ा सुंदर हो गए, सारी पुत्रियों में कलह हो गया, किन कौन विवाह करेगा। तब फिर आगे चले हरिश्चंद्र, रोहित, फिर आते हैं सगर महाराज, और वो अश्वमेध यज्ञ करते हुए वो अश्व को लेके चले। अश्व ने प्रवेश किया कपिल देव के आश्रम में, कपिल मुनि के आश्रम में। वहां गए तो उनके 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए, फिर वो गायब हो गया, उनको ढूंढ रहे थे, असमंजस। फिर उनके बाद अंशुमन आए, तब फिर कपिल महाराज ने उनको कहा कि भाई गंगा जी को लेके आओ तो ये 60,000 पूर्वज आपके पुनर्जीवित होंगे। तो दिलीप, भगीरथ, अर्थात संप्रदाय का मिशन जो है वो चलता रहता है। एक जनरेशन जितना कर सकता है करेगा, जो नहीं कर सकता आगे का जनरेशन करता रहेगा। तो गंगा जी को प्रकट करके भस्म में से अपने पूर्वजों को पुनर्जीवित करने का ये मिशन था, ये एक जनरेशन में पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए संप्रदाय का कार्य भी कई कई जनरेशन तक चलता रहता है, मिशन से बद्ध होना चाहिए। तो आगे चलकर इस तरह हुआ, फिर वो प्रार्थना किए कपिल देव से, और फिर तब जाकर भगीरथ ने वास्तव में गंगा देवी को लाने में वो वास्तव में सफल हुए। शिवजी ने अपने जटाओं में उनको स्वीकार किया, धारण किया, और तत्पश्चात आगे ये हुआ। भगीरथ से आए सुदस, सुदस से आए सौदस। हाँ, सौदस, ये इनकी भी कथा बिल्कुल हटके है। इनके ये एक असुर का वध किए, उस असुर के भाई ने इनके घर पे कुक का रूप में वो घुस गए, किचन में घुस गए उसका भाई। और एक दिन वशिष्ठ ऋषि आकर बैठे हैं, प्रसाद पाने आए, तो वो जो असुर था जो कुक के रूप में था, कुकिंग में आदमी का फ्लैश बना दिया, मांस। और वशिष्ठ ऋषि देखे, यार आदमी का मांस मुझे खिला रहा है, अभिश्राप दे दिया सौदस को कि तुम आदमी का ही मांस खाने में टेस्ट रखेगा। तो उसके बाद उनके श्राप से उनका स्वभाव बदल गया, मनुष्यों का वो मांस खाने लगे। और एक बार एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोग में लगी थी, उनका मांस खाने गए, इसके उनको अभिश्राप दे दिया कि आप जब भी भोग करने जाओगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे उनके हाथ मित्र सह करके भी वो उनका एक आगे वंशज आते हैं, और वो भी अभिश्राप देने जाते हैं, तो उनकी पत्नी उनको रोक लेती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उनके हाथ में जो जल होता है वो उनके पैर में गिरता है, तो उससे कलमश आ जाता है, इसलिए उनका नाम पड़ेगा कलमश पद। खैर, उनके आगे आए खटवांग महाराज, एक क्षण भर में उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया, सफल किया। खटवांग महाराज के आगे आए दशरथ, दशरथ से आगे आए राम लक्ष्मण, फिर आए लवकुश। इस प्रकार संपन्न होता है सूर्य वंश। और सूर्य वंश संपन्न होने के पश्चात आगे आता है चंद्र वंश। तो इसलिए चंद्र को देख के ही कैसे शीतलता आ गई। और फिर ब्रह्मा जी, अत्रि, अत्रि के साथ सोम, तो सोम ने भी गड़बड़ किया। सोम ने बृहस्पति की पत्नी तारा को अपहरण कर लिया, तारा को अपहरण कर लिया। बृहस्पति बड़े आक्रोश में आके आक्रमण किए, तो फिर बृहस्पति के विरोधी शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने सोम को सपोर्ट किया, और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। और जब तक बृहस्पति उनको वापस लेने आए तब तक तारा गर्भवती थी, फिर जबरदस्ती कहा कि अब पुत्र को दो, तो उनके पुत्र निकले बुध। जैसे ही बुध प्रकट हुए, सोम और बृहस्पति दोनों में युद्ध छिड़ गया किसका पुत्र है। तो मतलब कॉन्ट्रोवर्सी की कोई कमी ही नहीं है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कला झगड़े अभी स्टार्ट हुए हैं, हमेशा से हुए हैं, अलग अलग परिवेश में हुए हैं। तब फिर उनके आगे आते हैं पुरुरव और उर्वशी, उनकी कथा भी आती है, और सत्यवती और रुचिका, और तब जाकर जमादाग्नि और रेणुका, और उसमें आते हैं परशुराम जी की कथा आती है नवे स्कंद में। क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्रह्मेश्वरी यथा प्रभा, क्षमया आशु भगवान तुष्यंते हरिरीश्वर। तो परशुराम जी की कथा में यहां पर जमादाग्नि क्षमा के विषय में वर्णन करते हैं। कार्तिवीर अर्जुन का वध करने के पश्चात फिर 21 बार क्षत्रियों का विनाश करते हैं परशुराम जी। और फिर पुरुरव और उर्वशी से फिर नहुष, और फिर उनसे आते हैं ययाति, और इस प्रकार से देवयानी शर्मिष्ठा, और इनकी कथा आती है कि एक जब वो स्नान करने वो लोग जाते हैं तो उनके केवल कपड़ों को लेकर झगड़ा लग जाता है, और उस समय देवयानी और शर्मिष्ठा का जब विवाद होने लगता है तब उसके कारण वो अभिश्राप एक दूसरे को दे देते हैं। और महाराज ययाति की इच्छा होती है कि उनसे विवाह करे, और उसको लेकर एक लंबी कथा चलती है जो कि नवम स्कंद में वर्णन किया गया है। और तत्पश्चात आती है कथा दुष्यंत की और रांतिदेव महाराज की, कि कैसे रांतिदेव महाराज ने अपना तन मन धन एक करके उनके पास भिक्षा मांगने के लिए आए हुए सभी लोगों के क्षुधा को भूख को मिटाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और इस प्रकार रांतिदेव महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा संतोष है कि अपना सब कुछ समर्पित करके आपके लिए मैं अपना जीवन बलिदान करूं। तत्पश्चात नवम स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से वर्णन करते हैं कि कैसे कृष्ण का विस्तृत वर्णन कीजिए। कलो जनिष्यमानानां दुःख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्योद्वतनोत्तनुम यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे, हाँ सत्कर्ण पीयूषे यशस तीर्थवरे असकृत श्रोतांजलिभिर उपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनाम। तो ये नवम स्कंद के अंत में ये श्लोक आता है, यस्मिन कृष्ण के लीला का वर्णन सुन के सत्कर्ण पीयूषे, जब ये पीयूष रस भक्तों के कान के भीतर प्रविष्ट करके उनके हृदय तक जाएगा, सत्कर्ण पीयूषे यशस तीर्थवरे असकृत श्रोतांजलि भीर, ये कर्णरंध्रों से सुनकर उपस्पृश्य जब ये स्पर्श होगा धुनुते शुद्ध हो जाएंगे कर्म वासना, हर प्रकार के कर्म की भावनाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये नवम स्कंद का अंत होता है कि श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंत में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार दशम स्कंद में लीला करेंगे इसका एक परिचय देकर नवम स्कंद समाप्त करते हैं सुखदेव गोस्वामी।